लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج۔ اس صورت پر بیان شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، بی عذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے، اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے، بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ۔ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لم تستعجلون السیئة بالحسنہ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو۔ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی ابھی آ جائے نا عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر، کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ اس کے ذمے پیش کرنا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے کیوں ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار، تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے، چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور چار بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے۔ وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے۔ تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا، میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا، وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان چار سے نکلوا لے زبان سے، چار سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے، دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ اگر آپ بیوقوف ہوگے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے۔ عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ سسر کی دھوپ، یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان، ورنہ پتلی گلی سے نکل، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے۔ یہ تو پلان معلوم، ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان چاروں سے یہ اگلوانی جائے گا۔ تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے، جو مشرکین دلیل مانگتے تھے، بھئی قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بے بھائی کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا، یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز میں ہونا ہو، लेकिन हमें उसका वक्त मालूम ना हो। मुझे पता है मैं कब मरूंगा, आपको पता है आप कब मरोगे, बोलो ना। अब कोई डॉक्टर आपसे कहे कि यार एक दिन आप मरोगे, आप कहो डॉक्टर साहब क्या दलील है इसकी कि मैं एक दिन मरूंगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी इसकी दलील ये है कि आज तक कोई बचा है नहीं। तो तू क्या, तू जो है कोई सर्टिफिकेट लेकर आया है क्या, या तू भी अल्लाह का खास लाडला है? तो यही दलील है, सब मरते हैं तो भाई तू भी मरेगा। आप कहें अच्छा फिर कब मरूंगा ये बताओ। डॉक्टर कहे ये तो मैं नहीं बता सकता। आप कहें डॉक्टर साहब जब तक आप ये नहीं बताओगे ना मैं कब मरूंगा, मैं आपको समझूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास कोई दलील नहीं है। तो डॉक्टर अगर अकलमंद होगा बोलेगा भाई निकल पतली गली से, टाइम मेरा जाया मत कर, मैंने दलील दे दी है कि अरबों खरबों लोग दुनिया में आए हैं एक भी नहीं बचा। तो तू क्या अलग से सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के आया है अपने क्या, है एंटीवायरस डलवाया तूने क्या? तो ये दलील काफी है। और ये कहना कि कब मरेगा, भाई मुझे क्या पता कब मरूंगा यार, ना मुझे अपना पता है ना मुझे तेरा पता है, लेकिन ये इसकी अलामत नहीं है कि मरेगा नहीं तू। वो कह रहे नहीं डॉक्टर साहब मैं तो जब तक नहीं मानूंगा जब तक आप ये नहीं बताओगे कि कब मरूंगा। डॉक्टर कहेगा या तो गुस्से से टीटी उठा के गणपति पे रख देगा और बोलेगा तू अब मरेगा, 5 मिनट के बाद मरेगा, टाइम बता दिया ना मैंने। फिर भी डॉक्टर उसके जवाब देने में लग जाए ना तो इसका मतलब ये भी पागल है डॉक्टर। तो इसी तरह ये जो बातिल फिरके हैं ना ये भी ऐसे ही ऊटपटांग दलाइल का मुतालबा कर रहे होते हैं, इस्लाम पर ऊटपटांग किस्म के एतराज कर रहे होते हैं, जिनमें एक एतराज तो मैंने बताया भाई कयामत का टाइम बताओ ना कब आएगी। हर पैगंबर से ये पूछा गया है कब आएगी, आप सारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब कह रहे कयामत आएगी आएगी, और हर पैगंबर से पूछा गया टाइम बताएं, हर पैगंबर ने कहा नहीं पता हमें वक्त का इल्म नहीं है। तो लोगों ने कहा जब आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है तो आप दावा क्यों कर रहे हैं। तो पैगंबर ने कहा जितनी नॉलेज है उसका दावा किया जा सकता है, हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमें हर चीज की नॉलेज है। देखो दावा ये किया होता ना हमें हर चीज की नॉलेज है फिर हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कब आएगी कयामत, तो दावा और दलील आपस में मैच नहीं कर रहे होते। दावा तो है कि सब कुछ पता है, और जब पूछा जाता है उस दावे की दलील के तौर पर सब कुछ पता है तो ये भी बताएं तो वो कहते हमें नहीं पता। तो आप एक तरफ दावा कर रहे हो सब कुछ पता है, दूसरी तरफ कह रहे हो हमें नहीं पता, तो बात गलत हो जाती। पैगंबरों ने ये दावा किया ही नहीं कि भाई हमें सब कुछ पता है, पैगंबरों ने ये कहा हमें जितना पता है उतना बता दिया और ये पता है कि कयामत आएगी, ये अल्लाह ने हमें बताया। हमारे सच्चे होने की क्या दलील है कि हम झूठ नहीं बोलते, वो बहुत सारे दलाइल हैं। हमने 40 साल तुम्हारे पास गुजारे और फिर हमारे मोजज़े हैं, ये ऐसे मोजज़े हैं जो शोबदे नहीं है, क्योंकि जो शोबदे जिनके हाथों पे जाहिर होते हैं वो अलग किस्म के लोग होते हैं, जादू टोने वाले, उनकी ये पर्सनैलिटी नहीं होती, उनकी ये तालीमात नहीं होती, वो माँ बाप के हुकूक नहीं सिखा रहे होते, वो विरासत के खरीदो फरोख के निकाह तलाक के अहकाम नहीं बता रहे होते, वो अखलाकियात के पैमाने मुतायन नहीं कर रहे होते, तो वो अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं डाल रहे होते, वो तो अपने अपने करीब लोगों को इकट्ठा कर रहे होते। तो इतने सारे कराइन और दलाइल से ये तो साबित हो जाता है, और फिर पिछली आसमानी किताबें जिनको तुम भी मानते हो वो भी गवाही दे रही हैं। तो इतनी दलील काफी है हमारे इस दावे के सच्चे होने के लिए, टाइम हमें मालूम नहीं है। तो काफिरों ने भी, अब काफिर लोग एतराज करते हैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो इतनी कम उम्र से शादी क्यों की उन्होंने। किसी की उम्र का ज्यादा होना और उसकी जौजा की उम्र का कम होना ये नबी ना होने की दलील नहीं है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हां आप इस अमल का जुल्म होना साबित कर दो फिर ये इसकी दलील है कि जिसने ये काम किया वो नबी नहीं है। और जुल्म, जुल्म किसे कहते हैं, मजलूम पुकारे कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। दुनिया में कोई ऐसा जुल्म देखा कि मजलूम कहे बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ है भाई। कोई बड़ी उम्र का आदमी कम उम्र से निकाह कर रहा है तो जुल्म उस कम उम्र पे हो रहा है ना। तो हजरत आयशा से नबी ने निकाह किया, मियां आयशा की उम्र 9 साल, नबी की उम्र 49-50 साल, تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ, میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھیں, بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں, جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا, لڑکی سے نکاح ہوا, انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں, ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے, جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو. جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم, دیکھو اس کی ایک مثال دوں, کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے, اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا, ایک بار شارجہ میں ہم چھوٹے تھے اس وقت, آخری بال پہ کیا مارا تھا؟ چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں, چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے, وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی؟ چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی, میں نے بیان کیا, میں نے کہا جاوید میاں داد سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو. صحیح ہے نا, 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا؟ 1 کروڑ میں پہنا دیا. لکڑی ہی ہے تو ہے اس میں, زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی. 500 کا بلہ ہوگا, 1000 کا بلہ ہوگا, 10000 کا بلہ ہوگا, 1 کروڑ کا, 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا, یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر, اس بندے کے اوپر, اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اللہ بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے بلے ہو گئی ہے, میں یہ کہنا شروع کر دیا. میاں داد کے تو مزے ہو گئے, اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا, میں مثال دے رہا ہوں بھائی, دیکھو یہ بھی بلہ ہے, مارکیٹ میں قیمت پوچھو لوگ کہہ رہے ہیں 4000, کوئی کہہ رہے 5000. یار 1 کروڑ اور 4000 میں فرق کیا, اندھے ہو کیا تم؟ عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں, عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. میں نہ جاوید میاں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں, یہ ظالم ہے, اس نے اپنا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں گیا, ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے. سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے؟ پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اصطلاح. میں اتوار بازار گیا تھا, بکری پہنانا پہن کے آنے لگا تھا, شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے. خیر تو میں گیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یار, یہ دیکھو یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں, 100 روپے کا ہے یہ, یہ 5000 کا ہے, یا 10000 کا ہے, اسی جیسا ہے, اتنا ہی بڑا سائز ہے. جاوید میاں داد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا, 1 کروڑ کا پہنا دیا. تو مظلوم کہہ رہے بھائی جان آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا, یہ میں نے مجھے پہنایا نہیں گیا ہے, اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے خریدا ہے, اور میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 30 کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے, میں دے نہیں رہا, کیونکہ تاریخی بلہ ہے, ہماری نسلوں میں چلے گا. تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ. میں کہوں یار جب یہ خوش ہے, یا تو یہ بیوقوف بنا, وہ میاں داد کا بلہ ہی نہیں تھا, وہ کوئی اور بلہ تھا میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا. لیکن بلہ بھی میاں داد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے. چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی, عقیدت کی بات ہے یار, آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو تو یہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے, 2-4 چھکے اور لگائے گا تو 8-10 کروڑ ویسے ہی کما لے گا وہ. खिलाड़ी के पास तो बहुत पैसा होता है ना, तो ये उसका मुझ पर एहसान है कि मुझे बेच दिया उसने, वरना कस्टमर तो बहुत थे। यही बात है भाई, ये जो कहते हैं जुल्म किया जुल्म किया, सैयदा आयशा से पूछो क्या आप पे जुल्म हुआ, वो कहेंगी भाई पैगंबर के पास रिश्तों की कमी नहीं थी, पैगंबर हैं जो उनको पैगंबर मान रहे हैं उनके लिए तो बड़ी वैल्यू है, जैसे जो क्रिकेट को क्रिकेट मानता है और उसमें दिलचस्पी लेता है उसके लिए तो 1 करोड़ भी सस्ते हैं, मेरे जैसे के लिए 50 रुपए में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जैसे के लिए नहीं है। तो जो पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, अम्मी आयशा तो मानती थी ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अबू बकर तो मानते थे ये अल्लाह के पैगंबर हैं, उनके लिए तो भाई पैगंबर का एहसान है कि अम्मी आयशा से निकाह किया उन्होंने, आपके लिए रिश्तों की कमी बोलो नहीं थी, आपके लिए कौन सी कमी थी रिश्तों की, ये तो उनका नबी का एहसान है। लेकिन जो पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते वो बोलते रहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, डिमकाना हो गया। तो भाई आप जिस सबसे दुनिया में एक उसूल है कि जिस पे जुल्म होता है वो मजलूम माने कि मुझ पे जुल्म हुआ है, अगर मजलूम ही ना मान रहा हो, वो ही केस करने के लिए तैयार ना हो, तो दुनिया की कोई कोर्ट भी उस केस को लेने के लिए तैयार नहीं होती। आप अदालत चले गए, आपने वकील हायर किया, केस किया कि वसीम ने गफ्फार के 1 करोड़ रुपए चुराए हैं, वसीम ने क्या किया, गफ्फार के 1 करोड़ रुपए चुराए हैं, अदालत बुलाएगी आपको, आप वसीम हैं, कि नहीं मैं वसीम तो नहीं हूं, आप उसके मामू हो, नहीं भाई मैं उसका मामू भी नहीं हूं, तो वसीम ने आपको नुमाइंदा बनाया है, नहीं भाई नुमाइंदा नहीं बनाया, वसीम तो वो दूसरे महल्ले में रहता है, मैं इस महल्ले में रहता हूं, अदालत कहेगी तो जिसने जिसके चुराए हैं वो आए ना, क्या ख्याल है भाई। अब आप गए वसीम के पास, नहीं सॉरी गफ्फार के चुराए थे ना, किसके चुराए थे, गफ्फार के चुराए थे, आप गफ्फार के पास गए, यार तुम्हारे पैसे वसीम ने चुराए हैं, मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं, कोर्ट केस को निकाल रही है, बोली गफ्फार खुद आए ना, तो गफ्फार कहे जब मेरे पैसे वसीम ने चुराए हैं मैं नहीं जा रहा, तो तू क्यों मेरी तरफ से बिला वजह का नुमाइंदा बनाऊ, मैं जानू और कौन जाने, वसीम जाने, तो छोड़ दे तू मेरे मुझे अपने हाल पे। तो दुनिया की कोई कोर्ट भी जिस पे जुल्म हुआ है वो अगर केस ना करे तो इल्ला ये कि रियासत के खिलाफ कोई काम किया हो, फिर उसमें रियासत वकील मुतय्यन करती है किसी को, दुनिया में कोई कोर्ट भी ऐसा केस को नहीं लेती। तो ये कैसा केस है गैर मुस्लिमों का यार, कि हम तुम्हारी कोर्ट में अपना केस लेकर जाएं कि तुम सैयदुल अंबिया पे इल्जाम लगाओ कि इन्होंने 9 उम्र बच्ची से निकाह किया कम उम्र से और उन पे जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और जिस पे हुआ है वो केस करने के लिए तैयार नहीं है, वो फखर कर रही है, इसका मतलब तुम्हारा हेडिक है ही नहीं, ये उनका आपस का मामला है। यहां ये मसला भी हल हो गया कि लोग आजकल बहुत इतराज करते हैं, इतनी बड़ी उम्र के आदमी ने इतनी छोटी लड़की से शादी की, बहुत आ रहा है आजकल ना, तो वही कर ली वो जाने, वो आपस के उनका मामला है यार, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, बेवकूफ बना के किए फिर गलत किया, अगर बेवकूफ नहीं बनाया तो वो जाने, तुम दुआ करो अल्लाह सेट बैठ बना दे तुम्हारा भी, कोई क्या ख्याल है भाई। कोई जल गया किसी ने दुआ दी, लिखा होता ना रक्षे के पीछे, रक्षों के पीछे जो लिखा होता है गौर से पढ़ा करें, बड़ी बड़ी खानदानी बातें लिखी होती हैं ट्रकों के पीछे और रक्षों के पीछे, वो बातें जो जावेद चौधरी से आप नहीं सुनोगे ट्रक के पीछे मिल जाएगी आपको, जो मुबर्शिर लुकमान और हसन निसार और ऐसे ऐसे सहाफियों से आप नहीं सुनोगे वो आपको ट्रक के पीछे लिखी हुई मिल जाएंगी, बड़ी मोटिवेशन मिलती है उन बातों से। समझ रहे हो ना, कोई जल गया किसी ने दुआ दी, तो दुआ देने वाला जलता नहीं है और बरकत हो जाती है, जलने वाले क्या होते हैं सूखते चले जाते हैं। आप नमाज के बाद मिल लें भाई। तो मसला क्या है, मसला यही है, इससे बहुत सारे मसले हल होते हैं, समझ रहे हो, ये जो बातिल फिरके हमसे मुतालबे करते रहते हैं, मैं बार बार एक मसले को छेड़ता हूं इसी मुनासबत से आज छेड़ लूंगा, अक्सर एक सवाल पूछा था तो कजाए उम्री की क्या दलील है इस्लाम में, इतनी सारी नमाजें कजा हो जाएं, 10 साल की नमाजें कजा हो जाएं तो नमाजें सारी पढ़ना जरूरी है, कोई हदीस लेकर आओ, अक्सर मुतालबा कर रहे होते हैं ना आजकल के स्कॉलर की क्या दलील है भाई 10 साल। भाई हमारे जिम्मे दलील पेश करना है, आपने हमसे कहा ना कि हदीस लेकर आओ, हर मसले पर हदीस नहीं होती है, हदीस में उसूल जाब्ता बयान कर दिया, अलबैहिनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकर, जो दावा करेगा दलील उसके जिम्मे है, ये हदीस में आ गया, तो हम ये तो साबित कर देंगे अकल से कि मुद्दई आप हो, दावा करने वाले हम नहीं है, मुद्दई आप कैसे हो। इस्लाम में हमें यही मिलता है कि जब नमाज कजा हुई है چاہے جان کر قضا ہوئی. نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے, نبی کی چار نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں, کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. چار نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے پھر استغفار. تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو, بھولے سے قضا ہو, چار ہوں یا چار ہزار ہوں, اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر چار نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی, چار ہزار قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس, اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا, دس سال نمازیں چھوڑی ہیں. تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے, دس سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی, ہم دس سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے کہ ایک دن میں پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں دس سال کی نمازیں دس سال میں پڑھو. آپ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی چاہے دس سال ہو بیس سال ہو, آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضائے عمری بھی کرنی پڑی. اجماعی مسئلہ ہے, جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں, اجماعی مسائل ہے یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے کہ وہ پیش کرے کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اور بھی ایک, میں نے بتایا تھا نا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, بتایا تھا نا مسئلہ, ایک اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً. میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے. اس دفعہ ان کی باری ہے, یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے, اور اگلی دفعہ ان کی باری. انتابونا کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے یہ. کتنی بڑی دلیل ہے, حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے, فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے, عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ یہاں ہو جاتی ہے, جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ. علیہ صاحب نے فوراً, ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ طنز بہت کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دی. اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے, میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا. اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے تاپتے تاپتے آپ پہنچے کہاں, بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا, قصبہ کبیرہ تھا, بہت بڑی آبادی تھی وہ. قریہ کبیرہ ہونا یہ بڑا قصبہ, وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے, اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں, تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو, مجتہدین کو. آج کل کے اسکالرز کو فالو مت کرو, بہت خلطے مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ, دائیں بائیں بائیں سے دائیں. میں وزیر آباد میں تھا نا, تو تین طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی وہاں پہ. میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. تو کسی نے مجھے اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے, اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی, اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے تین طلاقیں ایک ہوں گی, اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا تین طلاقیں ایک ہوں گی. تو وہ بڑے متاثر ہو, کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک تین طلاق کو ان کی عدالتیں ایک کر رہی ہیں, پرانا قانون ختم کر کے نا تین طلاق تین والا ختم کر کے ایک پہ لا رہی ہیں, تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں. میں نے کہا انہی کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں 3 طلاق کو ایک قرار دیا گیا، حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں آیا ہے. یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا، اس کا مطلب 1965 تک مصر میں 3 طلاقیں کتنی تھیں؟ 3 تھیں. یعنی 1300 سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے 3 3 ہوں گی. 1300 سال کے بعد والا مصر اچھا ہے؟ 1300 سال تک مصر کے علماء عدالتیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے. یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا اس فتوے پر، یار بڑا زبردست مفتی صاحب نے فتوا دے دیا نا، وہ جو اہل حدیث عالم تھے، کہ یار مصر نے بھی ایک پاکستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کی، یہ دیوبندی وہاں بڑے یہ لوگ ہیں جو ٹس سے مسنی ہوتے ہیں، اندھے مقلد ہیں، باقی تو براڈ مائنڈیڈ حکومتیں ہیں، قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہیں وہ. ابے یہ براڈ مائنڈیڈ حکومتیں ہیں، آج آ رہا ہے اسلام یہاں پہ، سوڈان میں آج اسلام آیا ہے. کہہ رہے سوڈان میں بھی 1955 میں کر دیا یا 65 میں کر دیا. میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت تک تو 3 3 تھیں، اب جا کے کیا ہو رہی ہیں؟ ایک ہو رہی ہے. یہ خود اس فتوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا بولے گا 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کیا؟ اب تمہاری سمجھ میں قرآن و حدیث آیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 1200 سال سے کیا کھا رہے تھے تم؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہے؟ اور ہمیں کہتے ہیں دیوبندی یہ ایسے کرنے، فلانے ایسے کرنے. ابھی ایک اور مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا نا، انار والا، جو میں نے رجوع کیا تھا یہ حدیث مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی. انہوں نے پھر 3 طلاق پر بنایا کہ دیوبندی کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. پھر سعودیہ کے مفتیوں کے حوالے دیے، 3 1 ہوتی ہیں. کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ. دیوبندی 3 کو 3 نہیں کہتے، سارے صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں، تابعین 3 کو 3 کہتے ہیں، چاروں امام 3 کو 3 کہتے ہیں، امام بخاری 3 کو 3 کہتے ہیں. مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف. جہاں کسی دیوبندی کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا، نام کس کا لیتے ہیں؟ دیوبندی. ایسا کہہ رہا ہوں، نیچے بھی سارے انہی کے مخنجو اندھے مقلد کہہ رہے ویل ڈن زبردست. دیوبندی 3 کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 3 کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود 3 کو 3 کہتے ہیں، حضرت عمر 3 کو 3 کہتے ہیں، حضرت عثمان 3 کو. سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں، ایک سند پر بھی غیر مقلد یا اہل حدیث حضرات اعتراض نہیں کر سکتے اس کی. حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے 3 کو 1 کہا، وہ تو غضبناک ہو گئے. اتنی واضح. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو 3 کو 3 نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. لیکن اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا چند سعودیہ کے 1 2 مفتیوں کا حوالہ دے دیا. اور جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کرتے ہیں، وہ سارے ایک طرف. تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے؟ دیوبندی ایسا کرتے ہیں، دیوبندی ایسا کرتے ہیں، فلانا ایسا کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا ہے. یہ منجن بک رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میرے بھائی؟ بولو، مذہب کے نام پہ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بک رہا ہے؟ منجن. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط بیانی ہے، قرآن حدیث میں بھی 3 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حنفی ابھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور اسی وجہ سے شافی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے حنبلی بھی کہتے ہیں کہ 3. سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے، سب ایک ہی رزلٹ پہ پہنچے ہیں. اب سعودی عرب کی عدالتوں نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے. رپورٹیں آ رہی ہیں، ابھی مستند خبر نہیں ہے، لیکن یہ کب کیا ہے؟ سن 2022 میں یا 21 میں. سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا 22 میں آیا؟ بولو، سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک، یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا، 45 سوری، تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے، وہ 2-4 سال نکال لیں آپ، اس سے لے کر اب تک 3 کتنی تھیں؟ 3 تھیں. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے 3 کو 1 کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو، یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ خوش نہ ہو، اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا वो कहेगा इतना बीवी के हलाल हराम का मसला हल्का मसला नहीं है। इनके यहां तो 1400 साल जो पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया, बनू अब्बास की खिलाफत, बनू उमैया की खिलाफत और मुगल बादशाहों की हुकूमत, जितनी भी इंपायर्स रही है दुनिया में मुसलमानों की, सऊदीया की हुकूमत, सऊदीया, यूएई की हुकूमत, सारी अदालतों में 1200-1300 साल तो ये कोर्ट से फतवा जारी हुआ है, कोर्ट से फैसला कि एक मजलिस में किसी ने 3 दफा तलाक का वर्ड दोहराया तो बीवी हमेशा के लिए क्या हो गई, हराम। और अब 15वीं सदी में जाके ये दोबारा से इश्तिहाद कर रहे हैं, तो ये तहरीफ ईसाइयों ने की है, यहूदियों ने की है। भाई मुसलमान उलमा स्कॉलर्स इस तहरीफ को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो वो तहरीफ है जो यहूद और नसारा ने अपनी अकल इस्तेमाल करके की है अपने मजहब में। वो भी यही कहते थे, 3 तलाक को एक कहने वाले क्यों कहते हैं, कहते 3 तलाक के बाद औरत का घर उजड़ता है, एक्चुअली वो हलाले की तरफ जाती है, एक्चुअली ये होता है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई आपकी राय पर शरीयत का मदार नहीं है, ऐसे तो एक्चुअली एक्चुअली करके ना यहूद और नसारा ने भी बड़ा बेड़ा रख किया दीन का। यहूद और नसारा ने तो तहरीफें की, तलाक का दरवाजा ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा एक्चुअली जब तलाक होती है घर उजड़ता है, लिहाजा तलाक पे पाबंदी लगाओ। उन्होंने तो फिर 4 शादियों से भी ज्यादा उनके मजहब में इजाजत थी। उन्होंने कहा एक्चुअली एक्चुअली जब एक बीवी के बाद दूसरी आती है, पहली को तकलीफ होती है, पादरियों ने 2 शादियों पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी। ये तो इस्लाम का हुसन है कि ये तहरीफ उलमा होने नहीं देते। समझते हो कि नहीं समझते हो, उलमा ये तहरीफ नहीं होने देते। वो आवाज उठाते, बोलते हम नहीं मानेंगे इस तहरीफ को। भाई कुरान आज थोड़ी आया, सदियों से जो आ रहा है, और इसी वजह से हम 4 इमामों की इत्तिबा का हुक्म देते हैं ताकि आप ट्रैक से हटे नहीं। कुरान और सुन्नत के नाम पे आपको कोई भी मंजन बेच के ना ट्रैक से हटा देगा। इस वजह से हम इसकी पाबंदी का हुक्म देते हैं, इसको पकड़ के रखो। समझते हो बात को, मेरे मौजू से हट रहा हूं मैं, लेकिन वो बात चल रही थी ना कि आपके मतलब की दलील थोड़ी दी जाएगी। दलील वो दी जाएगी जो जिससे जिसके तसव्वुर से किसी दूसरी चीज का तसव्वुर लाजिम आ रहा है, और कहीं भी कुरान में नहीं है 3 तलाकें एक होती हैं, कहीं भी हदीस में नहीं है। ये मसला मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं कि लोग आजकल दे रहे हैं तलाकें, और तलाकें देने के बाद फिर वो बातें कर रहे होते हैं, फलां से फतवा ले आओ, फलां से फतवा ले आओ। जबानों पर कंट्रोल करो मेरे भाई। अल्लाह ने जब कोई निजाम बनाया ना, बहुत सोच समझ के बनाया है। इंसान की अकल वहां तक नहीं पहुंचती जहां अल्लाह का कानून पहुंचता है। हमें लग रहा होता है कि 3 तलाकें देने से औरत का घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी मसलहतें हैं जो इस्लाम चाहता था। नाजायज है तलाकें देना इकट्ठी, लेकिन अल्लाह ने नाफिज इसलिए किया है कि इख्तियारात अल्लाह ने मर्द को दिए हैं तलाक देने के, मर्द को दिए। औरत की जान छूटना इस्लाम में मर्द से आसान नहीं है। ये अदालती खुला बोला तो बकवास है, बिल्कुल फजूल चीज है ये, इसकी कोई शरीय हैसियत नहीं है। बार बार कहता हूं जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता, फजूल चीज है बिल्कुल। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े जज से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा ये बकवास है, ये फजूल है, ये तलाके वाला के जो आप लोग दे रहे हो ना कोर्ट में बैठ गए बड़े जज से, तो थोड़ी सी बहस भी हो रही थी उनसे मेरी। वो कहने एक्चुअली हुई, मैंने कहा एक्चुअली एक्चुअली नहीं होता, आप बोल दो ये इस्लाम नहीं है, ये पाकिस्तान का कानून है, इस्लाम का लेबल नहीं लगाओ आप, इस्लाम का लेबल नहीं लगाओ तो ये कोई नहीं होता एक्चुअली एक्चुअली। जिसकी बीवी है वही साला तलाक दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, जज वह नहीं दे सकता तलाक, चंद सूरतों के अलावा। वो मैं बार बार बताता रहता हूं, बेतहाशा मारपीट, बिल्कुल ही नान नफका बुनियादी नहीं दे रहा, ना रख रहा है ना छोड़ रहा है। बाज लोग शादी करके निकल गए बाहर, 4-4 साल बीवी को पता ही नहीं है, बीवी राब्ता कर रही है, भाई या तो मुझे रखो या छोड़ो कुछ करो, कहने ना छोड़ूंगा ना रखूंगा। ये सिचुएशन में फिर शरीयत ने कुछ राइट्स दिए अदालत को, नॉर्मली ये बोलो नहीं होता। तो खैर अब एक्चुअली एक्चुअली कर लोगे तो इसमें बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। वो यही कहते हैं कि हमारे यहां बाद मजहबी स्कॉलर ऐसे हैं कि यूनाइटेड नेशन जिन उसूलों को सामने रख के कानून साजी करती है ना, वो इन उसूलों को सामने रखकर इस्लाम के कानून में तब्दीली कर रहे हैं कि देखें एक्चुअली इस्लाम तो एक वसी मजहब है, इस्लाम तो चाहता है एक्चुअली सबके साथ अच्छा हो, तो एक्चुअली अगर हम औरत के इख्तियारात बढ़ा दें तो सोसाइटी में क्या होगा, उस पर जुल्म नहीं होगा। भाई ये फिर यूनाइटेड नेशन की तकरीरें हैं, ठीक है ना। इस्लाम जो 1400 साल पहले आया और इस्लाम ने औरत के फायदे के लिए कानून बनाया, बाज दफा एक पे जुल्म हो रहा होता है लेकिन बहुत सी महफूज हो रही थी। सबसे बड़ी हिकमत ये कि जब मर्द को पता होता है ना मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जाएगी नहीं, वो उसको अपना समझता है, जायदादें उसके नाम करेगा, उसके लिए प्रॉपर्टी बनाएगा, विरासत कोशिश करेगा। जब पता है कि किसी भी वक्त मार्केट से ये क्या हो सकती है शॉर्ट, फिर उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है। फिर कभी भी जा सकती है तो छोड़ो टाइम पास करो, ज्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है जैसे कि गोरे करते हैं। तो ये मैं जल्दी से एक आखिरी और मिसाल दे दूं। इसी तरह आजकल इस पर भी लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि सऊदी अरब में 8 रकत तरावी कर दी है, और देखो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्होंने तरावी को भी क्या कर दिया, समेट दिया, कुरान हदीस पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा लतीफा है मेरे भाई, ये क्या है, किस लतीफे पे हंसो। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जो तरावी शुरू की थी ना, उस वक्त से लेके आज तक, खुद सऊदीया के उलमा की किताबें हैं जो मैं आपको तहरीर दिखा सकता हूं, वो कहते हैं ऐसा एक दफा नहीं हुआ कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 20 रकत से कम हुई हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक 1400 साल कोई कम, बड़ी बड़ी हुकूमतें चेंज हुई हैं, बनू मैया की खिलाफत आई, फिर बनू अब्बास की खिलाफत आई, फिर खिलाफत उस्मानिया आई, फिर हुकूमत सऊदी आई, वहां भी चेंज नहीं हुआ। अब जाके अगर चेंज हो रहा है तो भाई या तो आप कुरान हदीस समझने में क्या कर रहे हो, गलत करो। आपकी एक राय है, आप उस राय को कुरान और सुन्नत करार देकर पूरी उम्मत पे थोप रहे हो आप। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जो तहज्जुद वाली हदीस है जिसका तरावी से ताल्लुक नहीं है, आपकी एक राय है कि वो तरावी से मुताल्लिक है, आपकी राय है, हो सकता है राय में इख्तलाफ, लेकिन आप अपनी राय पूरी उम्मत पे कैसे थोप रहे हो मेरे भाई? हरमैन तो मरकज है पूरी उम्मत का, यहां वो चलेगा जो पूरी उम्मत का मजहब होगा, जो 99% उम्मतियों का मजहब होगा। 99% इस उम्मत में फॉलोवर्स जो है वो हनफी शाफी मालिकी हम्बली हैं, 99% अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहा हूं, उनमें 99% इन चारों के फॉलोवर्स हैं। तो आप वो 99% की राय को का एहतराम नहीं कर रहे, मरकज में जो मुसलमानों का क्या है, मरकज है, और चंद लोगों की राय आपने क्या कर दी, मुसल्लत कर दी। इससे इस्लाम का इमेज दुनिया में खराब होगा, लोग कहेंगे यार इनको अभी ये नहीं पता रमजान में कितनी रकतें बाजमात पढ़नी चाहिए, वही इनको कुरान अब समझ में आ रहा है। तो इससे उम्मत टूटेगी, जुड़ेगी नहीं उम्मत, इससे एतराजात पैदा होंगे, लोगों को असलाब से एतमाद ही खत्म हो जाएगा, और ये हो रहा है। खुद सऊदीया के जो इस तरह के मुतशद्दिद उलमा है ना, जो सलफियत में मुतशद्दिद हैं, मैं आपको यकीनी बात बताऊं, अंदर की खबर है कि उनमें जो मुतशद्दिद की बात कर रहा हूं, हर सऊदी आलिम की बात नहीं कर रहा, उन्होंने आइमा अरबा से लोगों का एतमाद हटाया ना, कुरान हदीस करके लोगों का उनपे से एतमाद उठ रहा है। अब यूनिवर्सिटियों में वहां माहौल ये बन रहा है कि जब इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद फर्ज नहीं है तो बिन बाज की तकलीद क्यों, कहां से फर्ज हो गई? फिर हमारी जो समझ में आएगा वो, फिर वो कभी किसी गामदी साहब जैसे किसी स्कॉलर की किताब पढ़ रहे होते हैं। अभी देखो ना, हज का खुतबा भी बड़ी कोई मुतनाज़े किस्म की शख्सियत से दिलवाया गया सऊदी अरब में। तो अब वो तो फिर आजादी है भाई, आपने खुद ऐसा जहन बना दिया लोगों का, लोग कह रहे जब नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है ना, सही है ना, फिर इनकी क्यों फर्ज है? तो अब लोग क्या हो जाएंगे, आजाद। और कल ऐसा भी होगा कि हो सकता है तरावी ही गायब हो जाए मार्केट से, क्योंकि ये तरावी है ही नहीं। जो गामदी साहब की राय है ना, वो कहते हैं ये तरावी क्या है, ये सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। तो नतीजा हो सकता है कि सऊदी अरब में हम रमजान में जाएं और तरावी की नमाज ही हमें ना मिले वहां पे, ये भी पॉसिबल है। कहते हैं कहां से, अभी ये राय अभी तक चली नहीं है, लेकिन चल जाएगी मार्केट में। चलने में जब आप एक दफा हट गए तो फिर मैदान क्या है, बोलो, खुला मैदान है। खैर, कौन से पुराने दुखड़े लेके हम बैठ गए। तो मैं जो बयान कर रहा था, बयान ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई कयामत आएगी, हर पैगंबर ने दावा किया तो फौरन सवाल होता था, भाई टाइम बताएं, पैगंबर क्या कहते थे, हमें टाइम मालूम नहीं है। अच्छा, ये एक अजीब बात है, पैगंबरों की जब आप जो कन्वर्सेशन है ना, जो उनकी बातचीत उम्मतियों के साथ जब आप देखते हैं, उसमें एक चीज है साफ गोई, क्लियरिटी बहुत है उनके दावों में। हम दूसरे पैगंबरों को छोड़े, हम सैयदुल अंबिया की बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल पूछे गए, जिनके आपने जवाब दिए, कहीं भी उन दावों में आपके टकराव नहीं है। जो भी दो नंबर आदमी होता है ना, वो किसी एक बात पर टिकता, बोलो, नहीं है, क्योंकि उसका मकसद है शोहरत, इज्जत, दौलत, तो वो पेंतरे बदलता रहता है। हम सियासी लोगों को देख लेना, कल जिसके खिलाफ मुर्दाबाद, आज उसी से क्या कर रहे होते हैं भाई, गले मिल रहे होते हैं। वो कहते हैं यार हमें कुर्सी चाहिए, भाड़ में जाए, तू मुर्दाबाद था, तू जिंदाबाद था, क्योंकि उनका कोई विजन और हदफ नहीं होता ना, कोई हदफ नहीं होता, विजन नहीं होता। जिस आदमी ने दौलत कमानी है, कितना ही बदअखलाक क्यों ना हो, हर जगह बदतमीजी से बात करेगा, लोगों से गालियां देगा और कहेगा यार इसके बगैर सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। कस्टमर कोई बहुत अच्छा आ गया, कितनी तमीज से बात करेगा ना उससे, मोहब्बत से बात करेगा। क्यों? कहेगा भाई मेरा बिजनेस है, मैं अगर बदतमीजी करूंगा पैसे क्या हो जाएंगे, जाया। तो वो पॉलिसियां क्या करता है, चेंज करता रहेगा। उसका हदफ क्या है? दौलत। अगर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कुफर कुफर नबाशत सच्चे नबी ना होते तो फिर यकीनन ये इसकी अलामत ही, माज अल्लाह आपने झूठ बोला है। तो झूठ क्यों बोला जाता है? पैसों के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, इसीलिए बोला जाता है ना। क्या हो गया भाईजान? इसीलिए बोला जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावे आपके चेंज होते हैं, जहां जिस वक्त जो मौका देखते उस अपने आप को उस हिसाब से क्या कर लेते, दावों में तब्दील कर लेते। पहले दिन से आपने जो दावा किया ना, मौत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावे पर कायम रहे। जरा भी स्ट्रेटेजी तो चेंज हुई है, तरीकेकार तो चेंज हुआ है, वो तो कामयाब इंसान की अलामत होती है सोसाइटी जमाने के लिहाज से। तरीकेकार को क्या करे, चेंज करे। जहां जंग करनी है जंग की जाए, जहां सुलो करनी है वहां सुलो की जाए, जहां माफ करना है माफ किया जाए, जहां इंतकाम लेना है इंतकाम लिया जाए। दावा एक हर्फ भी आपका शुरू से आखिर तक चेंज नहीं हुआ। आपने दावा क्या किया? एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तुम मर के खत्म नहीं हो जाते, बल्कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी है। मुशरिकीन ने बार बार कहा भाई आप ये कर लें, आप ये कर लें। फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। ये जो आपका दावा था ना, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, ये जब कोई दो नंबर लोग इस तरह के दावे करते हैं ना, भाई मैं तो एक्चुअली आप जैसा हूं बस, जब उनको इज्जत शोहरत मिलती है ना, तो ये दावा क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका चेंज होता है। वो फौरन कहते हैं भाई असल में वो तो मैंने कह दिया था मैं आपकी तरह का इंसान हूं, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं बहुत ही कोई अलग सी चीज हूं। क्योंकि जब देखता है ना लोग आना शुरू हो गए, तो फिर अलग किस्म के दावे उसके शुरू। मुझे साथ ये भी होता है, मुझे यूं भी नजर आता है, मुझे ऐसे भी नजर आता है, मैं यूं भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। हमारे पैगंबर पहले दिन से जिस दावे पर रहे वो था अना इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं सिर्फ तुम्हारी तरह का इंसान हूं, तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है। ला आलमु गैब समावाती वल अर्ज, ना मैं आसमानों जमीनों के, ला आलमु अनफ समावाती वल अर्ज अल गैब इल्लल्लाह, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है। मुशरिकीन बार बार आके पूछते क्यामत कब आएगी, आप कहेंगे भाई मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो गैब का इल्म नहीं है। अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मुझे मा मस्सनी सू, कभी कोई मुसीबत ही नहीं आती। मैं तो भाई मुसीबतें भी आती हैं मुझे तो मुसीबतें भी आती हैं, मुझे तो खुशियां भी आती हैं, मैं खुशियों पे खुश होता हूं, मुसीबतों पे गमजदा। अगर मेरे पास इख्तियारात होते या मेरे मैं जो है गैब का इल्म होता तो मुझे पता चल जाता कल मुझे ये मुसीबत आने वाली है, तो पहले से बचने का मैं इंतजाम कर लेता। कैसी अपनी पोजीशन, बिल्कुल जो पहले दिन थी आखिरी दिन भी वही रखी, भाई मैं अपनी तरफ नहीं बुला रहा, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। यहां तक के बाद हदीसें तो ऐसी तवाजो वाली मिलती हैं, ऐसी तवाजो वाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि खजूर के जो नर खजूरों को मादा खजूरों से मत मिलाओ, उन्होंने नहीं मिलाया, ताबीर नखल कहते हैं। तो वो खजूर में कमी हो गई, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह खजूर में कमी हो गई, आप फरमा मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं भाई, मैं क्या हूं, नमाना सही मुस्लिम की हदीस है बुखारी मुस्लिम की, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, मैं दीन के मामले में हुक्म दूं तो फॉलो करो, दुनिया के मामले में अंतुम आलम भी उमरी दुनिया को मिलनी, भाई दुनिया तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, खजूरों का तजर्बा मुझे थोड़ी है, तुम्हें क्या है। कोई मजहबी लीडर जो दो नंबर हो, इस तरह का स्टाइल होता है उसका, पीर साहब आजकल के देख लो ना, चाइना के पीर आ रहे हैं मार्केट में, इतना सा पीर होगा बातें ऐसी करेगा, वो लंगड़ों को भी ठीक कर सकता है, वो फाली जदाओं को भी ठीक कर सकता है, वो गंजे के सर पे भी बाल निकाल सकता है, वो जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी भी करा सकता है, वो संगदिल महबूब को उसके कदमों में भी ला सकता है। टुच्चे किस्म के होते हैं, खुद इनके महबूब मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लेकिन दावे देखो वो जो फूको वाला है। और एक सरकार नहीं है, ऐसी तो करोड़ों सरकारें हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है, ये यहां ज्यादा है। जरा से चार आदमियों ने इज्जत देना शुरू कर दी तो पीर साहब का स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। मुझे घर में बुलाओ मैं फूक मारूंगा, वहां से जिन पड़ेल भूत क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। पीर साहब की दुआ है, हमारे सर पे हाथ है, जिसकी वजह से बिगड़ी बनती थी। हमारे पैगंबर का پہلے اور آخر دن بھی. حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا, نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی, یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربو کا فقاتلا, جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے, ہم یہیں بیٹھے. نہ نہ, آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوور دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالی, انگلی مبارک, اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم, میرے پاس اختیارات نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی, چینج. پیر صاحب کہیں گے میں بول نہیں رہا تھا. ایک پیر صاحب کا کوئی مرید نے خواب دیکھا. پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں. پیر صاحب نے کہا بتا بھائی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں اور میری انگلیاں گندگی میں. وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گھن آ رہی ہے. وہ پوری پورا نام جب مسجد کے باہر کسی کو سناؤ گے پورا نام لے کے سنانا, اس کے بغیر کیچڑ تو بہت ہلکی چیز ہے بھائی, اس میں گندگی میں سمجھ لو. تو پیر صاحب نے کہا دیکھا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں. میری انگلیاں شہد میں, تمہاری انگلیاں گند میں, گوبر میں. کہتے ہیں خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی, اس کو کمپلیٹ ہونے کائنڈلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ کمپلیٹ. پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا بچپن میں مناظرہ ہوا. مناظرہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. مناظرہ تھا کسی بدتی سے. اس بدتی نے ہمارے کسی بزرگ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بزرگ نے نا فلاں عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے. تو اس پہ وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, دیکھو یہ لوگ دیوبندی گستاخ اور فلانے گستاخ. اچھا اسی قسم کی عبارت ان کے بھی کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی, ان کو مل گئی. مناظرے کا دن طے ہو گیا, یہ وہاں چلے گئے, اکیلے گئے نا یہ. اب یہ اپنا واقعہ ہمیں سنا رہے تھے. تو اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے, یعنی اکیلے سے مراد یہ کہ عالم تو یہ اکیلے ہی تھے, باقی جو غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں دو چار لوگ. اب وہاں جب جا کے یہ بیٹھے نا تو انہوں نے, وہ آ گئے, انہوں نے بولا تمہارے بزرگ گستاخ اور فلانا اور دمکانا اور کافر ہے. یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی بزرگ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہو تو وہ بھی کافر ہیں. اب وہ ایک دم نا تھوڑا سا, اچھا یہ ڈرامہ کر کے نا کتاب ساتھ لے کر آئے تھے, اور ڈرامہ کر کے ایسے لگے جیسے ان کو وہ ان بزرگ کی عبارت مل ہی نہیں رہی نا. ایسے گھننے بن گئے کہ ان کو ان کے بزرگ کی عبارت, کہہ رہے یار وہ تھی پتہ نہیں کہاں, بھائی کہاں ہے وہ, ایسے نا بات کر رہے ہیں پورے فل ایکٹنگ. وہ کہہ رہے بھائی اسی میں تھی بھائی, اب جب مل نہیں رہی یار کیا کر رہے یار تو. اب مجمع وہاں جمع ہوا تھا مسجد میں. اب ان کا نا کانفیڈینس پیدا ہونا شروع ہو گیا ان لوگوں میں جو مخالفین تھے نا, ان میں ان کو ہو گیا بھائی یہ اس کی بھول گیا یا نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کہہ رہے یار وہ پتہ نہیں گئی کدھر ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا لکھا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب نا تھوڑے تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں کافر ہے, تھوڑے تھوڑے گھبرانے کے نمل لے جائے نا کہیں. تو اب پھر یہ تلاش کر رہے ہیں یار گئی کہاں یار. تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں کہاں گئی. تو لیکن اگر لکھا ہو تو کافر ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی لکھا ہو تو پکا کافر ہے, لیکن تو دکھا تو صحیح نا, چوری چھوڑیں گے نہیں اب ہم. ان کے ذرا ان کو پکا کروا دیا اس پہ. ان کو کیا کروایا؟ پکا کروا دیا. انہوں نے ان کو پہلے نا مضبوط کرو تاکہ یہ ایسا نہ بولے کہ نہیں اس کا ایکچولی اس کا تو یہ مطلب. پھر یہ کہہ رہے پھر مل نہیں رہی. اب کہہ رہے ہیں یار وہ مل نہیں رہی, لیکن اگر بالفرض کسی نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ابے ہم تجھے نا ماریں گے, پکا کافر ہے, اسلام سے خارج ہے, تو دکھا تو صحیح. جب بہت زیادہ ان کی زبان سے اگلوائے اور گھننا بن کے جیسے وہ عبارت ہی گم گئی ہے, فوراً نکال کے دکھا دی یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو کہہ رہے میں بھاگ گیا وہاں سے کیونکہ پتا تھا طبیعت سے کیا کروں گا, پٹوں گا. لیکن بہت سارے لوگ نا جو پیر کو اپنا باپ مانتے تھے وہاں سے کٹ گئے وہ. تو یہ نا بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. خیر کہاں بات چل رہی تھی, میں کیا کہہ رہا تھا یار, अबे बात क्या है। हाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा पहले दिन से कोई इस तरह के दावे नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए कि मैं मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं ताकत और कुव्वतों का मालिक। बुखारी की एक हदीस जब हमने पढ़ी ना तलबे इल्मी के दौर में, ये मौत्ता इमाम मालिक में पढ़ी थी हमने हदीस, मैं हैरान हो गया कि यार ऐसी पाकीज़ा सीरत सय्यदुल अंबिया की। फजर की नमाज पढ़ाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा की सफें लगी हुई हैं, बुखारी की हदीस है, असल में तो मुअत्ता इमाम मालिक की है, फिर वहां से वो तो पुरानी किताब है ना मुअत्ता इमाम मालिक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफें खड़ी हो गई, आपने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए लोगों में तुम्हारी तरह का इंसान हूं, अनसा कमा तनसाउन, ऐसे ही भूल जाता हूं जैसे तुम भूल जाते हो, मुझ पर गुसल फर्ज है और मैं गुसल करना भूल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए गुसल करके आए, आपके बालों से पानी टपक रहा था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो जो जर्फ के छोटे होते हैं ना वो बदगुमान हो जाएंगे ऐसे मौके पे, यार ये सय्यदुल अंबिया हैं, पैगंबर हैं और गुसल करना भूल गए हैं भाई, फर्ज गुसल जो जनाबत का गुसल होता है, ऐसा ही होगा कि नहीं? आज कोई पीर ये काम कर ले, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जी, लंगड़ों को सेट कर रहे हैं, गुर्दों की पथरी निकाल रहे हैं और मुसल्ले पे आ गए, याद अबे यार रात बेगम से मुबाशरत हुई थी या नाइटफॉल हुआ था और जो है अबे मैं तो गुसल ही भूल गया हूं। मैं कहता हूं मुरीदीन पकड़ पकड़ के कूट के बोलेंगे तू गंजों के सर पे बाल निकाल रहा है, हैं पथरियां निकाल रहा है और तुझे इतने शऊर नहीं है कि तू गुसल करना भूल गया, यह हाल होगा कि नहीं होगा? तो जाहिलों को जाहिल मिलते हैं लेकिन एक नंबर लोगों को एक नंबर मिलते हैं। पीछे अबू बकर उमर और ऐसे लोग थे सफ में, वो लोग थे, वो नबी से बदगुमान नहीं हुए। यही नबी की खूबसूरती है भाई, दावे में क्लियरिटी है। हमने कब दावा किया कि हम कोई फरिश्ते हैं या हम कोई क्या है, हम वैसे जो है ना आप हमें कोई भूलते ही नहीं, हम तो भाई तुम्हारी तरह के इंसान है। पहले दिन से अपने आप को इंसान कहा और इंसान भी इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह का इंसान। ऐसा ना लोग समझेंगे इंसानों की भी दो किस्में हैं, पैगंबर अलग टाइप के होते हैं और आम लोग अलग। भाई मेडिकली फिजिकली मैं इंसान हूं, रोटी पानी का मोहताज हूं, मुझे निकाह की भी जरूरत है, औलाद की भी जरूरत है। आपके जब बेटे का इंतकाल हुआ आपकी आंखों से आंसू जारी हुए, मैं गमजदा होता हूं और मुझे मुसीबतें भी पहुंचती हैं, खुशियां भी पहुंचती हैं, ये सारी चीजें जो नेचुरल। तो याद रखो हक पर वही होगा जो पैगंबर की सीरत पर होगा। जो इस ट्रैक से हटा ना और दावे शुरू कर दिए मैं कुछ अलग ही चीज आ जाऊं मार्केट में, और भाई तू पता नहीं तू कोई मजहबी रहनुमा नहीं हो सकता, तू कोई जाहिल पीर हो सकता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? फिर देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हो गया, कितनी इज्जत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर तो और फुतुहात के दरवाजे खुल गए। अपनी वफात से पहले आप वसीयत कर रहे हैं, लअनल्लाहुल यहूद व नसारा, अल्लाह यहूद व नसारा पे लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों की खबरों को ईदगाह बना लिया, मेले ठेलों की जगह बना लिया। मेरी खबर के साथ ऐसा मामला ना करना। जो झूठे लोग होते हैं वो कहते हैं यार बस मरूं ना पता चले क्या हुआ है, कोई दुनिया से गया, कब्र पे ऐसा धमाल होना चाहिए, फला जगह कब्र बनाना भुल्ले शाह की कब्र के करीब, या अब्दुल्ला शाह गाजी के, लोग कह रहे होते हैं ना ये दावे, अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब बनाना, वहां उर्स हो मजा आए, वो पता चले वो बंदा है। लोग चाहते हैं रिकॉर्ड में हमारा नाम रहे। हमारे नबी वफात से पहले आपको जब यकीन हो गया अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, आप क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह यहूद नसारा पे लानत करे, उन्होंने पैगंबरों को सरदागाह बनाया, कब्रों को, पैगंबरों की खबरों को, तो मेरी खबर को सरदागाह ना, ऐसा ना हो कि मेरी खबरों पे तवाफ और सरदे शुरू हैं। तवाफ की जगह और सरदे की जगह अल्लाह का घर है, पैगंबर का घर नहीं है। नहीं यही बात मेरे ख्याल है, मक्का में है वो, मदीना में भी नहीं है। आप चाहते आप कह सकते थे कि भाई वो तो था अब वो कैंसिल हो गया है, अब क्या है अब यहां करो, सहाबा शुरू कर देते, ना 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 ना। फिर आपने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेले ठेले ना लगे हो यहां पे। तभी आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे सलाम हम पढ़ते हैं, फौरन छुड़ता क्या कर देता है आगे, यहां ठहरना नहीं है, सलाम पढ़े और निकले यहां से। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? तो इतनी क्लियरिटी भाई, इतनी दावे में सच्चाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के पास बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सरदारों को समझा रहे हैं। एक नाबीना साहबी आए, गरीब मिस्कीन, आपको नागवार गुजरा कि मैं इतनी अहम महफिल में हूं और ये गरीब मिस्कीन साहबी क्यों आए। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا، چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمى، ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں؟ پھر اللہ نے کیا تنبیہ کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ، انت لہ تصدا، ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ، یہ سردار لوگ، اور جو بےچارا غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں. بتاؤ کسی کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے؟ ہے بھائی، وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیہ کرے گا، میں نے بالکل قوم کے وسیطر مفاد میں کیا کی ہے، صحیح کیا ہے بالکل. ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کس کے مفاد میں؟ قوم کے وسیطر مفاد میں. تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف، صحیح ہے نا، اپنے اگینسٹ جاری آئے. اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا بھی تھے، غریب بھی تھے، ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو، جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، تنبیہ کی ہے مجھے میرے رب نے. اتنا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے. جتنے بھی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی، غریب کو ویلیو نہیں دیتے، ان کو کہنے اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں، وہ ہدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، کہتے ہیں یار یہ غریب ہے ٹھیک ہے زکات صدقہ 50 روپے پکڑ پتلی گلی سے نکل، ٹھیک ہے نا. تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگائے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو پھر ہم بیٹھیں گے. قرآن میں جگہ جگہ نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگائے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ تو ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا، تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ مَن یَنصُرُنِی مِنَ اللَّهِ اِن طَرَدْتُہُمْ، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے، اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے پاس اللہ کے کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ہے کلیئرٹی ویژن میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا پتہ ہی نہیں ان کا ہدف دنیا ہے، پیسہ ہے، یا دین کی دعوت ہے. تمہارا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے عزت، شہرت، پیسہ، جہاں سے آئے گا وہاں پلٹنا شروع ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تانا دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جاتے، جو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے نا ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف میں آیتیں نازل ہوئی نا، وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی یہ جو غریب لوگ مسکین لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں آپ، اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے اصل میں یہ غریب لوگ ہیں نا تو ان کو اسلام میں تھوڑی سی عزت مل رہی ہے، اس چکر میں مسلمان ہوئے، ویسے تو اس سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت ہے نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ پر ان کا حساب نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو جھانکیں کہ یہ پیسوں کی لالچ میں یا عزت کے چکر میں مسلمان ہوئے یا اوپر اوپر سوئے. یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو اسلام کی طرف آ رہا ہے آپ نے اس کو گلے لگانا ہے، ویلکم کرنا ہے اس کو آپ نے. تو پیغمبروں کی سیرت سے پتا چلتا ہے بھائی، بہت واضح ان کی دعوت، بہت واضح دعوت. تو جو اسی نہج پہ کام کرے گا نا وہی برحق ہوگا. خوب سمجھ لو، وہی کیا ہوگا؟ برحق ہوگا. جو اس نہج سے ہٹے گا وہ برحق نہیں ہو سکتا، وہ برحق نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب مشرکی نے مکہ تانے دیتے تھے نا کہ یہ غریب لوگ ہیں ان کو تو عزت نہیں مل رہی ہے تو اس لیے یہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ چلو تھوڑا سا یہاں پروٹوکول مل جائے گا تو ان کو اپنی مجلس سے نکالو آپ، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ نبی کو یہ حکم دیا کہ ان کو نکالے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ ان میں جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں نا آپ کے ساتھ جب آیا کریں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہا کریں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اللہ نے اپنے اوپر تم پہ رحمت کو فرض کر لیا ہے، لکھ دیا ہے کہ میں ان پہ رحم کروں گا. ان کو اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور کیسے رحمت؟ من عمل منکم سوء بجہالت، تم میں سے جو شخص اگر غلطی سے گناہ کر بیٹھے گا توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. یعنی دین پر جب آ گئے ہو نا تو چھوٹی موٹی خطاؤں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو، ایسا نہ ہو مایوس ہونا شروع ہو جاؤ. توبہ کرو گے اللہ کیا کر دے گا؟ माफ कर देगा। ऐसे इस तरह से इनको और इज्जत दें आप, और वो उन काफिरों को बता दें कि तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां कोई मकाम नहीं है। मुशरिकीन एतराज किया करते थे, मा लिहादर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा पैगंबर है, खाना भी खाते हैं और बाजार में खरीदारी भी करते हैं ये। तो हमारे नबी की जो जिंदगी बिल्कुल इंसानों वाली जिंदगी है उनकी। तो इसी तरह ये बात खूब समझ लो मेरे भाई, जो भी मजहबी स्कॉलर है ना, वो कोई मरीख की कोई अलग से मखलूक नहीं होते। लोग समझते ये कोई अलग ही चीज होनी चाहिए मार्केट, इनको बेटे की वफात पे रोना भी ना आए और इनको जनाब कोई गम भी ना हो और ये इनकी कोई अलग से बत्तियां लगी हुई हो, रेज निकल रही हो, ठीक है ना, फूक करें तो लंगड़ा सेट और फलाना सेट, इनके घर में कभी इख्तलाफ ना हो, कभी तलाक ना हो, कभी झगड़ा ना हो, कभी जो है इनका कोई बेटा नाफरमान ना हो। जैसे हो जाता है ना बात, कोई आले में बेटा अजीब सी चीज निकल आया, चर्सी निकल आया, लोग कह रहे हैं ये देखो दुनिया में नसीहतें करते फिर रहे हैं, बेटा क्या है, चर्स पी रहा है। भाई ये सारे बच्चे सुधरते नहीं है। अब ऐसा ना मेरा कोई बच्चा छुट्टा लगाना शुरू कर दे, आजकल मैं अपने बच्चों को भी बयान में बैठा रहा हूँ, वो बैठा हुआ तो नहीं है कहीं यहाँ पे, चला गया उठ के, शुक्र है पहले चला, ओ ये बैठा हुआ है ना, तो ये तो ऐसा ना हो गया, चलो ये भी चलता है, नेचुरल है नेचुरल। तो ये सब क्या है मेरे भाई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं काफिर निकला था, क्योंकि इंसान तो खुद जब तक सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करेगा, दुनिया में कोई ताकत उसको सीधे रास्ते पे बोलो नहीं चला सकती। अब मौलाना तारिक मिल साहब के जो मशहूर हुए थे ना, बेटे ने खुदकुशी की, तो वो तो 100% गलत साबित हुई, लेकिन फर्ज कर लो अगर की भी है, तो जरूरी तो नहीं कि मौलाना तारिक मिल साहब अगर दीनदार हैं तो बेटा भी लाजमी दीनदार हो, ये जरूरी है क्या? इससे बड़ा इश्काल तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर होता है कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे और आखिरी दम तक बेटा बागी रहा है, जब देख लिया ना अजाब आ रहा है फिर भी किश्ती में नहीं आया, सामने हलाक हुआ है। कोई ताना दे सकता है नूह अलैहिस्सलाम को कि आप 950 साल तक अपना बच्चा तो ठीक कर नहीं सके और दुनिया के माज अल्लाह आप क्या बने हुए हो, दुनिया के जनाब आप हिदायत के वो बने हुए हो, दाई बने हुए हो, कोई ताना दे सकता है? देगा तो वो क्या कहेंगे, भाई मेरे बस में जो था मैंने तरबियत में कमी नहीं की। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई तरबियत में कमी की होगी? तो इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने आ गई, तो फिर ये कहना कि उनके घर में अगर हुई नहीं है खुदकुशी की, ऐसा ना कोई खुदकुशी कुछ किसी नहीं हुई, तो खुदकुशी होती तो यहां होती है, यहां नहीं होती, तो वो तो उसको पता नहीं था उस चैंबर में गोली है। लेकिन कैसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार देखो मौलवियों के घर में खुदकुशी हो गई। भाई मौलवी कोई आलिम दीन हो वो कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। बच्चों का 100% जिम्मेदार दुनिया में कोई भी नहीं। मैं ऐसे उलमा को जानता हूं, सारी जिंदगी लोगों की दाढ़ियां रखवाने में मेहनत की उन्होंने, यानी बहुत सारे उलमा बड़े वो संजीदा होते हैं, उनके अपने बेटे की दाढ़ी नहीं थी, वो कहते मैं क्या करूं, इसको गर्दन दबा दूं, घर से निकाल दूं। फिर बाप और औलाद के जो ताल्लुकात होते हैं उन बहुत सारी चीजें देखनी होती है। बाद दफा औलाद नाफरमान होती है, बाप उसको निकालता इसलिए नहीं है घर से, उसको पता है कि अभी नाफरमान ने निकाल दिया तो इससे बड़ा कोई मसला ना खड़ा हो जाए। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। आज एक मस्जिद के इमाम मुझसे मिलने के लिए आए, कहते हैं मैं इतना परेशान हूं, मैं लोगों में बयान कर रहा हूं और मेरी बीवी पर्दा नहीं कर रही, वो चेहरा खोल के बाजारों में जा रही है फिर रही है, मैं क्या करूं? कह रहे मेरा मजाक उड़ रहा है सोसाइटी में कि ये पर्दे पर हर हफ्ते इनका पर्दे पर बयान होता है और बेगम को पर्दा नहीं कराया। मैंने कहा भाई लोगों को बताएं कि यार मेरे कंट्रोल में जितना था मैंने करवा लिया, अब लोग कहते हैं तलाक दे दो, तलाक के बाद मसाइल और खड़े होने का खतरा होता है, बच्चे रुल जाएंगे, अभी तो बेगम पर्दा नहीं कर रही, बच्चे तो कंट्रोल में है ना, पता चला बेगम बच्चे लेके मार्केट से क्या हो गई, शॉर्ट फिर बेटियां स्कर्ट पहन के गले में पर्स लेके घूम रही हैं, लोग कह रहे हैं मौलाना साहब की बच्ची को देखो स्कर्ट पहन के मार्केट में घूम रही हो, खैर हम बीवी के चेहरा खोलने को रो रहे थे, अब माशाल्लाह ये हाल हो गया है। तो जिसकी जो मजबूरी है वो वही जानता है, हमें इस बारे में तबसरा करने की इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। इसलिए दावे तो कभी करने ही नहीं चाहिए। मैं यहां बैठता हूं ना, मेरी कोशिश होती है कभी कोई दावा ना करूं, नेक होने का तो दावा करना ही नहीं चाहिए, मैं यूं हूं मैं हूं, भाई हमें क्या पता यार, आज अल्लाह की नजर हमसे हट जाए ना, बड़े बड़े परहेजगार लोग हमने देखे आसमान की बुलंदियों से जिल्लत की पस्तियों में गर्क होते हुए, ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि यार इससे भी ये गुनाह हो सकता है। तो दावे करो ही नहीं, हमारे पैगंबर ने दावे नहीं किए, और हम तो उम्मती हैं भाई, हम तो नबी गुनाहों से मासूम थे, पैगंबर से कभी गुनाह का इर्तिकाब नहीं हो सकता, ये अल्लाह की जमानत है, हमारी तो अल्लाह ने वो जमानत भी नहीं ली है। हम तो ये दावा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई हम कुरान और सुन्नत बयान करेंगे और कोशिश करेंगे हम भी अमल करें और आप भी अमल करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे पल्ले इससे ज्यादा मेरे भाई बोलो कुछ भी नहीं है। गलती हो जाएगी तो भाई हम भी अल्लाह की रहमत के क्या हैं, मोहताज हैं। वो माफ कर देगा तो 100 गलतियां भी हो जाएं भाई, अगर वो हमें माफ कर दे तो हम कामयाब हैं, और अगर वो माफ ना करे तो फिर हमारे अमल में तो इतनी ताकत नहीं है। हम सब मोहताज हैं अल्लाह की रहमत के। अगर अल्लाह हम पे रहम करेगा भाई, हम गुनाहों से बच सकते हैं और तौबा की तौफीक देगा, तो कोई गलती हो जाए तौबा की तौफीक दे दे वो। तो अल्लाह से ये मांगा करो कि मौत जो है ना ईमान और अमल सालेह पर हो। मौत किस पर हो? बड़े बड़े नेक लोग, हदीस में आता है कि ऐन आखिरी वक्त में पलट जाते हैं वो, जन्नत में एक कदम उनका जन्नत के करीब होता है एक बालिश, और ऐसे अमाल शुरू कर देते हैं कि जहन्नम में चले जाते हैं। और बुरे बुरे लोग ऐसे होते हैं जहन्नम के एक बालिश करीब हो जाते हैं और ऐसा नेक अमल करने लगते हैं कि यूटर्न लेके वो कहां चले जाते हैं? जन्नत में। हमने देखा है ना बूढ़े गैर मुस्लिम, मैंने तो ऐसे मुशाहिदा की, एक ईसाई मुसलमान हुआ, जवान था बिल्कुल, कोई मौत का चांस नहीं था उसका। कमाल की बात है, इधर इस्लाम कबूल किया, हमारी मस्जिद में मुसलमान हुआ था जब हम पहले रहा करते थे, इस्लाम कबूल किया रमजान में, उसी वक्त से रोजा शुरू कर दिया, अचानक बुखार आया और एक हफ्ते के अंदर अंदर डेथ हो गई। अब देखो 25 साल का यंग लड़का था, सारी जिंदगी ईसाइयत में गुजरी, लेकिन इस्लाम कबूल किया, और लेकिन ऐसा डर गया था ना इस्लाम पे वो, जब इस्लाम कबूल किया ना पूरा खानदान ने उसका बायकॉट किया। उसने कहा भाई मैं अब इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह की कुदरत, क्योंकि अल्लाह को पता था ये मरने वाला है ना, तो अल्लाह ने कैसे जन्नत का सामान किया उसके लिए। तो बीमार हो गया हॉस्पिटल में, बुखार बहुत शदीद था उसका, तो उसने वसीयत की कि भाई मैं मुसलमान हो चुका हूं, मैं अगर इस बीमारी में मर गया तो मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं है, मुझे मुसलमानों के तरीके से गुस्ल कफन दिया जाएगा और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया। उसके शुक्र रिश्तेदारों ने मौत के बाद इस चीज का ख्याल किया। यहां एक हिंदू हमारे हाथ में मुसलमान हुआ, उस बेचारे को हर वक्त फिक्र थी कि मेरे बूढ़े मां बाप मुसलमान हो जाएं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी से जो है ना वो दो चार हुआ, बड़े मसाइल हो गए। अल्लाह ने उसको ऐसा जज्बा दिया, उसको फिक्र की मेरे मां बाप क्या हो जाएं, वो सुनना नहीं चाहते थे उसकी बात, उसको घर से निकालने की धमकियां। उसके अब्बा को हो गया फालिज, बहुत बूढ़े थे, फालिज हो गया और बिल आखिर बीमार होते होते डॉक्टरों ने क्या कर दिया जवाब। फिर उसने अब्बा को ना किसी तरह समझाया, अल्लाह ने उसके अब्बा को कुछ दिल में नरमी पैदा की। मुझसे तो ये वाकई ही नहीं सुनाया जा रहा भाई, शादियों की बातें ठीक है यार, क्यों टेंशन ले आदमी। तो वो क्या हुआ, अभी थोड़ा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊं ना, तो वो अपने अब्बा को ले आया यहीं, तो मुझे कहने लगा कि मैं इनको बड़ी मेहनत से लेकर आऊं क्योंकि अब इनका आखिरी टाइम चल रहा है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं किसी भी वक्त, डॉक्टरों ने वो हालत भी देखने से लग रहा था। तो अल्लाह का फजल हुआ, उस बूढ़े बाप ने उस वक्त कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, और मैंने बार बार पूछा, मैंने कहा भाई अपनी मर्जी से इस्लाम, उन्होंने कहा अपनी मर्जी से, सही तरह बोला नहीं जा रहा था फालिश की वजह से, और बिल आखिर इंतकाल हो गया। थोड़े दिन इतलाई के भाई दो चार दिन बाद इंतकाल हो गया। तो मुझे वो हदीस याद आई कि एक बालिश इंसान जहन्नम के करीब पहुंच जाता है, कि अभी मरा और गया आग में, कैसी अल्लाह की रहमत के पलट के कहां चला गया। और उसके बेटे का कितना बड़ा एहसान है अपने बाप पर, कितना बड़ा एहसान है या नहीं है। और ये बेटे के भी मुखलिस होने की दलील है, जो इखलास से इस्लाम लाता है ना, सबसे पहले फिक्र उसको किसकी होती है, अपने मां बाप की। सहाबा में भी ऐसा ही है, हजरत अबू बकर अपने वालिद को तबलीग करते रहे इस्लाम ले आए, वो नहीं लाते थे इस्लाम, कितनी फिक्र होगी हजरत अबू बकर को। फिर जब मक्का फतह हुआ है ना, तो हजरत अबू कहाफा जो अबू बकर के वालिद थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल सफेद दाढ़ी, उनको लेकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कलमा पढ़ाया। कैसी तसल्ली हुई होगी ना अबू बकर को कि भाई अल्लाह ने मेरे लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया है। काफिर मां बाप के लिए तो मौत के बाद दुआ ही नहीं कर सकते आप, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سفید چمکتی ہوئی داڑھی دیکھی نا تو حضرت ابوبکر سے فرمایا اس کو رنگین کرو, ٹھیک ہے نا, اس داڑھی کو کیا کرو. اس لیے داڑھی میں خضاب لگانا افضل ہے, البتہ کالا خضاب جائز نہیں ہے. براؤن یا لائٹ براؤن یہ لگا سکتے ہیں جو دیکھنے سے براؤن بھی لگے, ایسا نہ ہو کہ ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں دھب کالا ہی لگ رہا ہو, وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے. خیر تو اس لیے دعویٰ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بھائی. کوئی غیر مسلم ہے آج کافر ہے, کل کیا ہو سکتا ہے مسلمان, اور کوئی مسلم ہے آج مسلم ہے کل کیا ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے. نبی نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, فتنوں کا دور ہوگا نا, انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا, ایسے حالات آئیں گے. تو اس لیے بھائی کوئی کسی کو, ہم سب انسان ہیں بھائی. اچھا لوگ یہ بھی علماء پہ کہتے ہیں ان کو غصہ آیا اس دن لڑ رہے تھے, یہ بھائی وہ بھی گوشت کھاتا ہے, آلو کے پراٹھے کھاتا ہے, گوبھی کے پراٹھے کھائے گا, پیٹ میں گیس پیدا ہوگی تو لڑے گا, کیا خیال ہے. دیکھ لیتے نا مذہبی اسکالر نے اس کو گالی دے دی یا برا یوں کر دیا, تو یہ دیکھو اخلاق پہ ان کے بیانات ختم نہیں ہوتے اور آج ان کی بدتمیزی دیکھو. بھائی جب کوئی بہت زیادہ ستائے گا غصہ آنا کیا ہے, نیچرل ہے. تو ہم نا نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں, نیچر سے بغاوت, اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. اسلام نیچر سے بغاوت کا نام نہیں ہے. اسلام بیلنس پیدا کرتا ہے ہر چیز میں. اسلام یہ نہیں کہتا غصہ ختم کر دو, اسلام کہتا ہے ہر وقت جو توے پہ بیٹھے رہتے ہو نا کہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتے, جو غصے آنے کی بات نہیں ہے. جیسے گھر میں بعض لوگ چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں, تمیز سے بیوی سے بات ہی نہیں کرتے, بچوں سے تمیز سے باتیں, محبت ہی نہیں دیتے بچوں کو, ہر وقت مار دھاڑ مار کٹائی اور تبے میں لگے رہتے ہیں. یہ گدھاپن ہے بھائی. اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو کیسے آؤ, مسکراتے چہرے کے ساتھ, سلام کر کے داخل ہو. تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے جو سب سے اچھا وہ ہے جو اس کے اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے, سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات, کیوں, وہ آپ کے ماتحت ہے. آپ اس سے تمیز سے بات کریں نہ کریں بیچاری کہاں جائے گی, دوستوں سے تو ہر آدمی تمیز سے بات کر لیتا ہے. اس لیے پیغمبر کی صحیح حدیث کیا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو دوستوں سے بات کرتا ہے, جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے. سب سے اچھا کون ہے, وہ کرائیٹیریا ہے اخلاق کا. ماں باپ سے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ عظمت ہے, بیگم ماتحت ہوتی ہے, اس سے دل ہی نہیں چاہتا تمیز سے بات کرنے کا. کیا گرل فرینڈ سے دیکھو کیسے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنی ایکچولی کر کے بیوی ہو گئی, اب دو چار دن تمیز چلتی ہے, اس کے بعد کیا ہے کیا ہے کیا ہے, کیا مسئلہ کیا تمہارے ساتھ. تو وہاں پتہ چلتا ہے نا. تو ہر وقت توے پہ بیٹھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ غصہ لیس ہو جائیں, جو مرضی آپ کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے. آج ہی کا واقعہ سنا دوں, بندہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ جائے لیکن جس کو چماٹا پڑا تھا وہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے. کیونکہ چماٹے میں ایک بندہ آیا, ابھی میں تھوڑا سا چینج کر کے بتا دیتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ میں نے, ابے یار وہ سمجھ جائیں گے یار کیسے کردار چینج کروں میں, تھوڑا سا گھما دیتا ہوں بات کو. خلاصہ یہ نکلا کہ کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائے گا نا, کتنا بھی چینج کرو یار کہیں نہ کہیں وہ بات وہاں پہنچ جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کیس تھا, اس نے اٹھا کے ایک تھپڑ جڑ دیا کسی کو. اس سے نہیں سمجھ, تھپڑ تو بہت سے لوگ کس کس کو جڑ رہے ہیں. اس بندے نے کھینچ کے کیا لگا دیا سامنے والے کو, تماچا. اور بھی بہت, ایک گھنٹے کی پوری کاروائی اس نے, یعنی مجھے تھوڑی دیر میں سنائی نا, یہ ہوا تو وہ ہوا, باقی ساری باتیں تمیز سے چل رہی تھیں اس کی. کہتا یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس بندے کو میں نے کیا لگا دیا, چماٹا لگا دیا, یہ یقیناً میری غلطی ہے. تو اب بتائیں کیا. میں نے کہا پورے ایک گھنٹے کی کاروائی میں ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے اور اس پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے, ندامت ہو رہی ہے. باقی سب کچھ جو ایک گھنٹے تک جھک مارتے رہے ہو نا, وہ غلط کیا آپ نے. وہ مجھ سے اس جواب کی امید نہیں تھی اس کو, یعنی پوری جو ان کا جو بھی جھگڑا چلا ہوگا نا, تو اس پوری کاروائی میں اس کو یہ تھا کہ میں نے تھپڑ لگا دیا بیوی کو, نہیں خدا نخواستہ, یہ بیوی کا کیس نہیں ہے, کسی بندے کا کیس ہے, مرد کا کیس ہے, مرد نے مرد کو تھپڑ لگایا. تو میں نے کہا اس پوری کاروائی میں نا ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے, وہ کیا کیا ہے, رکھ کے اس کو کیا لگایا, چماٹا لگایا. اگر پورا بناؤں گا نا پھر بہت مزہ آئے گا, اگر میں پورا کیس سناؤں گا نا آپ کو, جو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پورا پورا سمجھ میں آ جائے گا میں کیا, لیکن وہ میں سمجھاؤں گا نا تو وہ جس پہ لگا ہے نا وہ سمجھ جائے گا مفتی صاحب نے میرا کیسا کیا کر دیا. تھپڑ مارنے والی کی تو عزت اور بڑھ جائے گی, لیکن جس کو کھایا ہے نا اس کا ایک چماٹا بنتا ہے بس, لیکن یہ نہیں بنتا کہ اس چماٹے کو دنیا کے سامنے بیان کیے, پھر زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا, وہ کیا ہوا کہ جی وہ, میں نے کہا یار ایک ہی کام آپ نے اس پورے اس ایپیسوڈ جو تھا نا پورا, اس میں ایک ہی کام آپ نے ٹھیک کیا. फिर मैंने कहा भाई ये दुनिया इतनी ऐसी नहीं है जो हर वक्त मिठास की जबान समझती हो, लोग खा जाएंगे आपको, लोग मार के खत्म कर देंगे आपको, थोड़ा सा दहशतगर्दी दिखानी पड़ती है, आंखें दिखानी पड़ती हैं, हर जगह दिखानी पड़ती हैं आंखें, दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। कोई दुनिया का उसूल ऐसा है जो कोई दुनिया की गवर्नमेंट ऐसी हो जिसने पुलिस को कहा हो कि डंडा नहीं चलाना, बस चोर को मोहब्बत से समझाना है, पकड़ ले तो उसको फिर क्या कर देना है, छोड़ देना है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, लॉ है, कानून है, सजाएं हैं, तो आपको भी लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे। तो इस्लाम क्या है भाई, नेचुरल है। तो भाई वो सभी आता है इंसान को, बिला वजह का गुस्सा आना ठीक नहीं है, हर वक्त गुस्से में रहना ठीक नहीं है, असल तो अखलाक ही है। तो लोगों ने वो पता नहीं मजहबी लोगों से, उलमा से क्या तवक्को रखी होती। इसी तरह एक और आखिरी बात करके बस मैं बयान खत्म करता हूं, जब चल पड़ी ये बात तो ये मौजू मुकम्मल हो जाए। ये मैं बार बार शादी 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 चीखता रहता हूं ना कि बच्ची बाले हो, लड़का बाले हो, उसकी शादी करो। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले केस आया, किसी ने मुझसे पूछा मेरी बच्ची किसी को पसंद करती है, तो मैं बहुत तैश में आ गया हूं, जो है चंगेज खान। मैंने कहा देखो आपकी बच्ची किसी को अगर पसंद कर रही है, नेचुरल है। ये क्या है बोलो, ये नेचुरल। वो कभी भी किसी को पसंद ही ना करे ना, उसका दिमागी इलाज कराओ। क्योंकि लोगों ने इसको समझना शुरू कर दिया कि भाई ये तो वो है ना, ये तो गैरत। अबे जब वो औरत है तो वो मर्द की तरफ माइल होगी, आदमी है तो किसकी तरफ माइल होगा, औरत की तरफ। ये नेचुरल है भाई, मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बने। मैंने कहा फिर ये है कि पसंद करने के बाद दोस्तियां लगा रही है तो फिर बताओ गैरत बनती है। अगर पसंद करने के बाद उसने आपको बताया अम्मा के जरिए या किसी भी जरिए कि अब्बा मुझे वो पसंद है, मैं वहां निकाह करना चाहती हूं, तो ये बहुत शरीफ होने की क्या है, अलामत है। आप चाहते हो कि पसंद ही ना आए उसको, कोई पसंद ही ना करे, तो ये ऊपर का मसला क्या है उसका, ये नेक होने की अलामत नहीं है, ये टेक्निकल क्या है, फॉल्ट है। क्योंकि फिर वो शादी के बाद मियां को भी से भी मोहब्बत नहीं करी, क्योंकि उसमें ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ठीक है ना, पसंद वाले। तो वो मियां से वो कहेगी अब्बू मुझे कोई सहेली दिला देते तो अच्छा था, ये आदमी क्यों दिला दिया मुझे आपने, तो वो मोहब्बत करेगी मियां से। औरत अपने शौहर से मोहब्बत किस बेस पे करती है, आदमी होने की बेस पे करती है ना, क्या ख्याल है भाई। तो इसका मतलब उसमें आदमियों से मोहब्बत वाले सॉफ्टवेयर होंगे तो शौहर से मोहब्बत करेगी, वरना वो कहेगी अब्बू महमूदा से मेरी दोस्ती करा देते, महमूद क्यों दिला दिया आपने, क्या ख्याल है। इसी तरह बंदा जवान होकर कहता है अब्बा को मुझे वो फलानी पसंद है, तो अब्बा एकदम गैरत में आ जाते हैं। गैरत में आने का मसला नहीं है, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर जो आपके थे वही किसमें डले हुए हैं, क्या ख्याल है भाई। तो आप उस पर एकदम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, आप ही बता दो बेटा ये भंगन है, चमारन है, कुछ भी है, यहां हमारी परंपरा नहीं है, अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो बेहतरीन चीज है भाई, जहां चाह रहे हैं वहां क्या करो, वहां उसका निकाह करा दो। आपको तो खुश होना चाहिए कि बच्चा दोस्तियां नहीं लगा रहा, लेकिन अजीब गैरत के मसले हैं, अजीब सा पता नहीं दीनदारों का एक जहन अजीब सा समझ लिया गया है, अजीब सा वो एक तसव्वुर कायम कर लिया गया है तकवा का, लिल्लाहियत का, जो बिल्कुल नेचर के क्या है। इस्लाम बार बार मैं कहता हूं दीन फितरत है भाई, गोरों से हमें यही तो एतराज है, फितरत चेंज कर दी है, और इस्लाम किस पे लेकर आ रहा है, नेचर पे लेके आ रहा है। तो नेचर में आना तो ऐन इस्लाम है, तो वही चीजें होंगी जो इंसान के लवाजिमात के में से हैं। अगर आपके बेटे को लड़की पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब उसमें सॉफ्टवेयर है ही नहीं है, तो वो बीवी से भी मोहब्बत नहीं करेगा फिर, तो फिर बहुत ही एलजीबीटी वाला सेटअप ना हो जाए कहीं उसका। गोरे तो अब तरस रहे हैं कि हमारा बेटा किसी से उसको लवेरिया हो, और हम जवेरिया से लवेरिया हो, हम उसकी शादी कराएं उसको, तो गोरे में ना रो रहे हैं खून के आंसू, हमारा बेटा वसीम को पसंद करता है, माइकल को पसंद कर रहा है, हकीकत ऐसी वीडियोज आ रही है, वो सर पटक के बैठा हुआ है, अबे ये मेल बहू लेकर आएगा मेरे लिए, सही है ना। गोरे तो सर पटक रहे हैं, और मेरे पास भी जो कॉल्स आती है ना, बाद खवातीन कह रही मेरा बेटा लड़कों में दिलचस्पी लगता है, वो इतनी सर से रो रही है, कह रही है हम पागल हो गए हैं, इसको कैसे ठीक करें, और आपको इस पे इतराज हो रहा है मेरा बेटा किसी को पसंद क्यों कर रहा है, मेरी बेटी किसी को। मैं नहीं कह रहा वो आंख मटक्के लगाए वो जाके, लेकिन जब को एजुकेशन का माहौल है और मिस गैदरिंग का माहौल है, तो कहीं ना कहीं ये आंखें तो आंख मटक्के होंगे। आपने अभी क्या मैं मिसालें दूं, अभी छोड़ो, फिर मुर्गे मुर्गियों की मिसालें आती हैं, लोग कहते हैं ये कहां की कहां मिसालें लगा रहे हैं। तो इस्लाम दीन है, फितरत है मेरे भाई, फितरत को चेंज करने की कोशिश ना करो, ना किसी बुजुर्ग के बारे में ये तसव्वुर करो कि कोई खलाई मखलूक है, सारे एक ही जैसे हैं मेरे भाई, ठीक है ना, सब क्या है, सब एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो अल्लाह की हदूद को क्रॉस नहीं करते, हलाल और हराम में क्या करते हैं, फर्क करते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली नहीं होते उनके यहां हलाल और हराम में फर्क نہیں ہوتا. تو حلال پہ آ جاؤ اور حرام کو چھوڑ دو. اسی کو ولی اللہ قرآن نے کہا ہے, جو برائیوں سے بچ جائے فرائض واجبات پورے کر لے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, سنتوں کے بعد جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے. یہ جو میں نے بیان کے اینڈ میں کہا نا اذان ہو گئی تو وہ پھر نماز ہونے والی تھی کہ نیچرل ہے نیچرل ہے, تو وہ اس لیے میں شادی شادی چیختا ہوں کہ اگر یہ دیندار لوگ بچوں کی بچیوں کی شادیوں پہ توجہ نہیں دیں گے نا تو یہ حرام کاریوں میں پڑیں گے. پھر یہ چیز دینداروں کی کھوپڑی میں یہ بیٹھ نہیں رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں جب اتنا نیک ہے اتنا نیک بھائی نیک کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. ہے تو آدمی نا, ہر بندہ آدمی پہلے ہوتا ہے نیک بعد میں, ہر عورت عورت پہلے ہوتی ہے نیک بعد میں, کوئی بھی بزرگ بزرگ بعد میں ہے, آدمی کیا ہے نر پہلے ہے نر. اور زیادہ واضح لفظ, کوئی بزرگ مفتی عالم جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں نا تو یہ آدمی پہلے ہوتے ہیں اور بزرگ بعد میں ہوتے ہیں. اسی طرح عورت عورت پہلے ہوتی ہے, عالمہ یا بزرگیا بعد میں ہوتی ہے, وہ سمجھ رہے ہو. یہ والے سافٹ ویئر ہم اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے, تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دین جو بھی آدمی ہے, آدمی پہلے ہوتا ہے بھائی بزرگ بعد میں ہوتا ہے. وہ مثالیں بھی میں دیتا رہتا ہوں, یہ بات سمجھا رہا ہوں, کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں خانقاہ جوائن کریں گے, ایکچولی بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے. وہ بھی ضروری ہے, بزرگوں کی صحبت بھی ضروری, خانقاہیں بھی ضروری, تبلیغ بھی ضروری, لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آدمی پناہ ختم ہو جائے گا آپ میں. جیسے اس کی مثال ہے, جب بھوک لگے گی تو کیا کھانے کا دل کرے گا, روٹی. آپ مفتی ہو تو بھی روٹی کھانے, میرا تو پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, میں تو آپ سے بھی آگے کی چیز ہوں ٹھیک ہے نا. روٹی سے میرا صبح کا گزارا نہیں ہوتا. تو بھوک لگتی ہے, میرا بھی پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, آپ کا بھی کوئی روٹی کا, کسی کا بریانی کا, کسی کا کس چیز کا دل کرے گا. اب آپ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آ گئے, پھر بھوک لگی آپ کو, آپ کا یار فائدہ کیا ہوا, 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی بھوک لگ رہی تھی, روٹی کھانے کا دل کر رہا تھا, 4 مہینے لگا کے آگے اب بھی بھوک لگ رہی ہے, تو مجھ میں اور 4 مہینے لگائے جو نہیں لگا رہا اس میں فرق کیا ہو گیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار اس نے 4 مہینے لگایا اس کا بھی 2 پراٹھے کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں نے 4 مہینے لگا لیے میرا بھی 2 پراٹھے, تو ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ تو تبلیغ والے کہیں گے ہم نے تو پراٹھے چھڑوانے کے لیے تھوڑی لگائے, ہم نے تو اس لیے لگایا کہ بھائی چوری کے پراٹھے مت کھانا, پہلے تو چوری کر کے کھاتا تھا اب تو پیسوں سے خرید کے کھانا. 4 مہینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ حلال حرام میں فرق ہو جائے گا, داغے دل پھر بھی کرے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک بن گئے, بزرگ بن گئے, آپ نے اللہ اللہ سیکھ لیا, آپ حج کر کے آ گئے, اب آپ کا دل ہی مائل نہ ہو اس طرف, عورت کا دل مرد کی طرف ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل, سمجھ رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا. کیونکہ نیچر پہ جیسے جیسے آتا ہے تو انسان کی فطری صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں, اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کی صلاحیتیں, اس کی جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے, لوگ گدے گھوڑے بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے, یہ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, مجھے کیا, میری تو شادیاں ہو گئی ہیں. پہلے تو میں اگر کہتا تھا تو لوگ کہیں گے شاید اپنے چکر میں ہمیں بھی الو بنا رہے, تو ہمیں کیا بھائی, ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, سوسائٹی کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ گدے گھوڑوں سے سسٹم سے نکالو, انسانوں والے طریقوں پر لے کر آؤ. اچھا بھائی مفتی صاحب, اہل حق اور اہل باطل کی کیا پہچان ہے؟ اہل حق اور اہل باطل کی بہت ساری پہچانیں ہیں بھائی. اب کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب تو ایک تو اسلام اور غیر مسلم میں فرق ہے, یہ اہل حق, پھر اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں, ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ایک چھوٹی سی علامت تو میں بتا دوں, میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر جو اہل حق اور اہل باطل ہیں, یہی مطلب ہوگا نا آپ کا, کیونکہ کافر تو یہاں کوئی غیر مسلم تو میرا خیال ہے نہیں آیا ہوا بیان سننے. تو اسلام کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں ایک بہت اہم بڑا آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. دیکھو نبی نے پہلے بتا دیا نا کتنے فرقے ہوں گے, 72 فرقے ہوں گے. ان میں اہل حق کتنے ہوں گے بولو نا, نبی نے بتا دیا کتنے ہوں گے, 72 کیا ہوں گے باطل. یہ کلیئر ہو گئی بات؟ تو وہ سارے باطل ہوں گے تو بھی تو جہنم میں آئیں گے نا. حق پر کون ہوگا؟ ایک ایک بات تو یہ. دوسری بات نبی سے پوچھا گیا وہ حق پر کون ہوگا, آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, آپ نے فرمایا قرآن حدیث, کیونکہ قرآن حدیث کی تشریح ہر آدمی اخپل طریقے سے کر رہا ہے, تو آپ نے اس کی علامت بتائی کہ جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرے گا جس پہ صحابہ کا عمل تھا, ما انا علیہ و اصحابی. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے نبی نے تو قرآن حدیث دیا, قرآن حدیث دیا, اب صحابہ کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہو؟ میں نے کہا نبی نے جو قرآن و حدیث دیا نا, اسی قرآن و حدیث میں ہی صحابہ کا بھی تذکرہ ہے, ان کو نکالنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے پرویزی فرقہ کہتے ہیں قرآن ہے, قرآن قرآن کو مانو, باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن کو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو نبی نے علامت کیا بیان کی ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور کون ہوں, صحابہ ہوں. یعنی قرآن و حدیث کی وہ تشریح معتبر نہیں ہے جس کو صحابہ نے فالو نہیں کیا. ایک علامت سمجھ میں آ گئی اہل حق کی. دوسری اس سے بھی کلیئر علامت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح حدیث ہے, اس کو سارے فرقے مانتے ہیں, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ وہ فرقہ ہر دور میں رہے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے, شارٹ ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے, شارٹ ہو جائے. ہر دور میں رہے گا, کیونکہ اگر وہ کسی بھی دور میں نہیں ہے اس کا مطلب سارے گمراہ ہیں پھر. تو وہ جو فرقہ ہے نا وہ صدیوں سے چلا آئے گا, قیامت تک رہے گا. جب وہ فرقہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. یہ کتنی باتیں حدیث سے ثابت ہو گئیں؟ دو باتیں, ایک وہ کون سا ہے اس کی علامت, دوسری علامت کیا ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, ختم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی. اب ایک میں سوال پوچھتا ہوں, جو جدید اسکالرز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنے فرقے بنا لیے, اتنے فرقے, یہ سب غلط ہیں, آؤ قرآن و سنت پہ. تو جب انہوں نے کہا یہ سب غلط ہیں تو اٹ مینز امت گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے, حالانکہ حدیث تو کہہ رہی ہے سب غلط نہیں ہوں گے, ایک ہمیشہ کیا رہے گا, ایک باقی رہے گا ہمیشہ. اور نبی نے جو فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے, ان کو 73 کو نبی نے فرقہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو جو ایک ہوگا وہ بھی فرقہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو یہ جو کہتے ہیں فرقے ہی غلط ہیں, کوئی بھی فرقہ ہی صحیح نہیں ہے, فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے, تو نبی تو کہہ رہے ہیں ایک صحیح کیا ہوگا, ایک جو ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا, ان 72 کے مقابلے میں اس کو فرقہ ہی تو کہا جا رہا ہے. تو یہ تیسری علامت ہے کہ وہ بھی کیا ہوگا, بولو فرقہ ہوگا, ہمیشہ ہوگا, اور وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ تین علامتیں ہیں. اب جو بھی نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں سب غلط, میں اب قرآن و حدیث کو ایکسپلین کر رہا ہوں, تو ان سے آپ سب سے پہلے سوال پوچھا کرو کہ آپ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے نام پہ نیا فرقہ بنائیں, آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس صحیح فرقے کو ہائی لائٹ کر دیں. یہ لوگ زہر کا پیالہ پی لیں گے, اس صحیح فرقے کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے ان کی اپنی دکان کیا ہو جائے گی, بند ہو جائے گی. لوگ کہیں گے تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جب یہ صحیح ہے تو پھر تمہیں نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو پھر اسی کو فالو کرو نا, اسی کے علماء کو, اسی کے صلحاء کو فالو کرو جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو آپ ان نئے فرقوں سے پوچھا کریں جو بھی نیا بن رہے ہیں نا, کہ بھائی آپ نے جب فرقہ واریت ختم کرنے کی تحریک چلائی ہے تو یہ تحریک غلط ہے کہ سارے فرقے ختم کر دو, ہونا یہ چاہیے ان میں جو صحیح ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, لوگوں کو اس ایک پہ لانے کی کوشش کریں. یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اسکالرس تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, ان میں سے جو ایک صحیح ہے وہ ایک ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو سارے ہی غلط ہیں, یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ, ہم قرآن و حدیث بتا رہے ہیں اس پہ آ جاؤ. تو آپ بتا دیں مفتی صاحب ان میں سے کون سا صحیح ہے, کیا خیال ہے؟ آپ بتا دیں, جو 1400 سال سے بھی چلا آ رہا ہو, صحابہ کو بھی مانتا ہو اور نبی کے قرآن و سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور اس کا 1400 سال سے وجود بھی ہو, ان 73 میں سے وہ ایک ہو جو صدیوں سے آ رہا ہے, تو آپ بتا دیں وہ کون ہے. आप बताएंगे तो हम उसी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और बाकियों को क्या करेंगे, दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे। बाकी बोलेंगे ये सारे गलत फिरके बने हुए हैं, इन सबको चाहिए इन 72 को छोड़कर इस एक एक में आ जाएं। आप बता दें मुफ्ती साहब, आप भी तो चुप बैठे हैं। हम चुप नहीं बैठे, हम 20वीं दफा बता चुके हैं। वो क्या बता चुके हैं हम, वो अब आप सुन लें। नबी ने क्या फरमाया, जो कुरान और हदीस, और किस पे कुरान हदीस की वो तशरीह जो किसकी है, सहाबा की है। तो जितने भी दुनिया में फिरके हैं, जो भी कुरान और हदीस की वो तशरीह करता है जो सहाबा से साबित है या सहाबा ने जिसको फॉलो किया, कोई ऐसी राय कायम नहीं करता जिस पे सहाबा नहीं थे, वो सारे गुमराह, वो सारे जो भी इस ट्रैक पे चलेगा वो जन्नती फिरके में शामिल है, चाहे वो किसी भी नाम से काम कर रहा हो। और मैं आसान लफ्जों में कह देता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात, जो सुन्नत को फॉलो करता है नबी की, सिर्फ कुरान कुरान नहीं करता बल्कि जिसको फॉलो करता है सुन्नत को। नंबर दो, जमात, जमात से कौन मुराद है, सहाबा इकराम को मानता हो, सहाबा की जमात को फॉलो करता हो। मेरे भाई, ये दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी नाम से हो, हमारी नजर में ये अलग अलग फिरके हैं, अल्लाह की नजर में क्या है, ये एक ही है। और इस मायार पर पूरे उतरने वाले चारों इमाम हैं, अबू हनीफा, मालिक, शाफी और अहमद इब्ने हंबल, क्योंकि इनके उसूल है कि सबसे पहले कुरान फिर हदीस, और कुरान और हदीस की वो तशरीह जो इजमाए सहाबा के खिलाफ हो, इन चारों में से कोई भी नहीं मानता उसको। फिर इनमें जो फरोई इख्तलाफात है ना, वो फिरकों में दाखिल नहीं है, क्योंकि ये फरोई इख्तलाफात तो सहाबा में भी थे जिनको हमें फॉलो करने का हुक्म दिया जा रहा है। कोई सहाबी रफूल इदैन से नमाज पढ़ते थे, कोई बगैर रफूल इदैन के नमाज पढ़ते थे, कोई जोर से आमीन कहते थे, कोई आहिस्ता आमीन कहते थे, कोई हदीस की एक तशरीह करते थे, कोई हदीस की दूसरी। तो किसी ने किसी भी तशरीह को ले लिया और फॉलो कर लिया, वो जन्नती फिरके में आ गया, बेशक नाम उसका देवबंदी हो या बरेलवी हो या अहले हदीस हो या हनफी हो या शाफी हो या मालिकी हो, नामों में नहीं रखा। नबी ने ये नहीं फरमाया था कि 73 में से एक फिरका का नाम देवबंदी होगा या बरेलवी होगा या अहले हदीस होगा, ना 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 ना। नबी को पता था कि अगर मैंने बोल दिया ना कि फलाना होगा तो सारे वो नाम रख लेते हैं। क्या ख्याल है भाई, बाकायदा हुकूमत से अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेते, नामों पर लड़ाइयां होती। इसलिए नबी ने कहा नामों में कुछ नहीं रखा। अलामत देखो, अलामत जो कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जिसको सहाबा फॉलो करते हैं, उस तशरीह को जो मानता है वो जन्नती है, बेशक किसी भी नाम से हो। फिर अगर उनमें इख्तलाफ होता है मसाइल का, तो वो इख्तलाफ अगर सहाबा में भी था तो इनमें भी माना जाएगा, अगर सहाबा में नहीं था, अपनी तरफ से कोई इख्तलाफ बने तो ये जहन्नमी फिरके में दाखिल है। तो इस मायार पर आप मजहबी स्कॉलर्स को परखा करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लिहाजा कोई ऐसी हदीस लेकर आए जो सहाबा में, तभी तो मैं तीन तलाक के मसले पर इतनी शिद्दत से क्यों बोलता हूं। अहले हदीस हजरात से कहता हूं, यार ये तीन तलाक में अगर नबी के दौर में तीन एक होती थी तो कोई एक सहाबी तो दिखा दो जिन्होंने एक कहा हो। तुम कुरान हदीस की ऐसी तशरीह क्यों कर रहे हो जो सहाबा ने नहीं मानी? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। हजरत उमर ने मुता पे पाबंदी लगाई, लगाई कि नहीं लगाई? हजरत उमर फरमाया जो मुता करेगा ना, जिना वाली सजा दूंगा उसको, रजम करूंगा अगर शादीशुदा ने किया। अब शिया हजरात फौरन वो दलील देते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली कि हम नबी के दौर में मुता करते थे, अबू बकर के दौर में करते थे, उमर ने पाबंदी लगा दी। हदीसें तो शियों के पास भी हैं। हम कहते हैं जब उमर ने पाबंदी लगा दी, तमाम सहाबा ने उस पाबंदी को मान लिया, सहाबा गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है, इजमा हो गया सहाबा कराम का। अब आप जो जितनी मर्जी हदीसें ले आए, क्योंकि हदीस को सहाबा ने हमसे ज्यादा समझा है, तभी नबी ने फरमाया मान अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। ऐसा ना हो मेरी बातें करके, सहाबा के अगेंस्ट बातें करके लोग कुरान हदीस की गलत तशरीहात ना शुरू कर दें। तभी हम शियों को दलील देते हैं कि भाई नबी के दौर में मुता हुआ है, ठीक है ये हदीस सही है, लेकिन नबी के कहने से नहीं हुआ। जमाने जहालियत में थी, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, नहीं पता होगा। हजरत उमर ने जो पाबंदी लगाई है और तमाम सहाबा ने उस पाबंदी को माना है, जब मान लिया तो ये इस्लाम का हुक्म है, वरना सहाबा गलती पे, जब एक सहाबी से गलती हो सकती, सारे से थोड़ी हो सकती है। बिल्कुल यही स्टाइल अहले हदीस का है। अहले हदीस कहते हैं नबी के दौर में तीन तलाकें एक होती थी, हजरत उमर ने कितनी कर दी, तीन कर दी। हम कहते हैं हजरत उमर ने जब तीन को तीन नाफिज किया, तमाम सहाबा ने माना, कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं है किसी सहाबी ने इंकार किया हो। इसका मतलब या तो उमर गलत है हदीस सही है, या हदीस गलत है उमर, माज अल्लाह उमर और तमाम सहाबा गलत है, दोनों में से एक बात तो हुई ना। तो अगर आप कहो कि हदीस तो सही है, हदीस से यही पता चलता है एक मजलिस की तीन एक होती है, उमर ने गलत फैसला किया, सहाबा ने उस गलत फैसले को मान लिया, इट मींस के आप मा अना अलैहि व असहाबी में से असहाबी को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے فلاں اجتہادی غلطی ہوئی، بھائی ہم حضرت عمر کی اکیلے کی بات نہیں کر رہے، ایک فیصلہ نافذ کرنے تمام صحابہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں، اس کا مطلب حضرت عمر نے حدیث کی مخالفت کی ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، جیسے شیعہ متوالی حدیثوں کا جو مطلب صحیح نہیں ہے، جو مطلب ہے صحیح مطلب وہ بیان نہیں کر رہے، وہ بس کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا ہوا ہے تو حلال ہے، تو ایسے ہی اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں تین ایک ہوئی ہیں تو ایک ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے دور میں تین جو ایک تھیں اس میں یہ کہاں ہے کہ ایک مجلس کی تین ایک تھیں، اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی کے آرڈر سے ایک تھیں، ہر کام نبی کے دور میں جو ہوا ہے وہ اسلام تھوڑی ہے، اسلام جب ہے جب نبی کے آرڈر پہ ہوا ہو یا نبی کی موجودگی میں ہوا ہو، نبی کے علم میں ہوا ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر نبی کی موجودگی میں ہوا ہے، نبی کے علم میں ہوا ہے، تو پھر سر آنکھوں پر، لیکن ایسا نہیں ہے، نبی کی کو جب تین طلاقوں کا پتہ چلا نا کہ ایک صحابی نے اکٹھی تین طلاق دی، آپ تو غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمائے اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے میں تمہارے درمیان موجود ہوں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، اگر تین ایک ہوتی تو نبی غضبناک ہو کے کھڑے ہوتے، کہتے کوئی بات نہیں تین ہے 3000 دیتی ہیں، اس میں غصہ آنے کی کیا بات ہے، ہوئی تو کتنی ہے، غصہ جب ہی آیا تھا کہ ذرا سی بات پہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا، اجاڑ دیا، تو آپ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر غامدیت ہے، پھر دین، پھر غامدی صاحب بہترین دین کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایکچولی کر کے ہر آیت میں انہوں نے اپنے ایک مفہوم بیان کیا ہے، تو آپ اگر صحابہ کو نکال دیتے ہو تو پھر قرآن و سنت، تو بھائی پھر جو جس کے منہ میں آئے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کرے گا، جو کہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، تو آپ کو صحابہ کو لانا پڑے گا، اس کے بعد بھی اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں فرقواریت نہیں ہے بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے 2 اجر ملیں گے، غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی گمراہ نہیں ہے پھر بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ حنفی شافی جو اختلافات ہیں نا، یہ وہ والے اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو جنتی فرقے سے ہی نکال دیں، امام شافی کی تحقیق یہ تھی کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، انہوں نے اس حدیث کو فالو کیا، امام حنیفہ کی تحقیق یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جس کا امام ہے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو دونوں کا اختلاف ہوا، یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا، عبداللہ بن مسعود فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ قائل تھے اس کے، عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، عبداللہ بن عمر قائل رہے ہیں رفع الیدین کے، اب آخر میں چھوڑ دیا تھا، نہیں چھوڑا تھا، ایک لمبی بحث ہے، بعض حضرات اس کے قائل ہیں، عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا ہے اس رفع الیدین کے مسئلے میں، یہ میں رفع الیدین کی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف اب اس جنتی جہنمی والا نہیں، آج مذہبی اسکالر دو نمبری پتہ کیا کر رہے ہیں، ایک دو نمبری تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں سب کو غلط قرار دے کر، بجائے اس کے کہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ والا صحیح ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہ پورے معیار ہی چاروں اماموں کو جو فالو کرتے ہیں نا وہ اس معیار پہ 100% اترتے ہیں، کیونکہ وہ مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں، ان چاروں اماموں کو جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں امام قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹتے نہیں ہیں، یہ ان کی یہ خوبی ہے، لہذا ان کو جو فالو کرے گا وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹے گا نہیں، جو ان کی تشریح کو فالو کرے گا، تو اب اس میں یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں دو بدماشیاں کر رہے ہیں، دو بدماشیاں، پہلی بات یہ کہ یہ نہیں بتاتے ان میں صحیح کون سا ہے، کیونکہ اس سے ان کی دکانیں کیا ہو جائیں گی بند، لوگ کہیں گے جب ان میں سے ہی صحیح موجود ہے تو انہی کو فالو کرو نا، تمہارے پاس ہم کیوں آئے پھر، دوسرا گڑبڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فروعی اختلافی مسائل جن پہ جنت جہنم کا مدار نہیں ہے، جو جنتی اور جہنمی فرقوں میں داخل نہیں ہے، ان کو بھی جنتی اور جہنمی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ جب بیان کریں گے تو ایسے بیان کریں گے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے گویا وہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے میں شامل ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے جو تشریح رفع الیدین کی ہے وہ مانو جو یہ تشریح کر رہے ہیں، جو یہ تشریح کر رہے ہیں حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو مانو، جو مخالف کے پاس دلیل ہے وہ بالکل کیا ہے، وہ غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی 2% کی اوقات نہیں ہے، ان کو اپنا باپ بناؤ گے جو یہ قرآن حدیث کی تشریح کریں اور ہم پہ مسلط کریں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے خلاف جائے وہ دیوبندیت ہے، وہ بریلویت ہے، وہ اہل حدیثیت ہے، وہ شیعیت ہے، وہ فلانیت ہے، وہ ڈمکانیت ہے، اس پہ فرقواریت کے لیبل تھوپنا شروع کر دیں گے، تو اسی وجہ سے جو تقلید نہیں کر رہے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بہت زبردست تقلید کر رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بناتے ہیں نا، بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر کے، اس ان کے اس مذہبی رہنما نے حلال जिसको कह दिया सही है वो सही है, जिसको कह दिया गलत है वो क्या है? गलत। जिस हदीस को कह दिया सही वो सही है, और जिस हदीस को कह दिया ज़ईफ वो क्या है? वो ज़ईफ है। तो इसलिए इन मंजनों से आप अपने आप को बचाएं। तो ये सारे मंजन हैं, फॉलो करें उन्हीं को जो मुज्तहिदीन को उम्मत हमेशा से फॉलो करती आ रही है, उसी में खैर है। उसके अलावा आप कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जो भी आपको उम्मत से हटा के एक नई चीज पे ला रहा है, कितना अच्छा खुशनुमा लेबल लगा दे मेरे भाई, वो गलत है। क्योंकि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे जमा, हर दौर में अहले हक रहेंगे। इनके पास तो जिस तरह ये इस्लाम को पेश कर रहे हैं ना, अहले हक की तादाद 4 और 5 से ज्यादा बनती नहीं है। जबकि हम कहते हैं लाखों करोड़ों उलमा सोलहा बुजुर्गान दीन, जो हनफी हैं वो भी जहन्नमी क्योंकि अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हैं, शाफी हैं जो इमाम शाफी की तकलीद कर रहे हैं वो भी क्या हो गए? क्योंकि फिरकों का मतलब तो इन्होंने ये बता दिया ना कि सारे फिरके जो हनफी हो शाफी हो सारे जहन्नमी। तो अब जहन्नम के बारे में जाने वालों की हम तादाद जरा बताता हूं आपको मैं। हनफी सारे जहन्नमी। आपको पता है जब से फिकह हनफी मुरतब हुआ है 50% से ज्यादा लोग अहले सुन्नत वल जमात में फिकह हनफी को फॉलो करते आ रहे हैं, 50% से ज्यादा, और अब भी 50% से ज्यादा है। ये मेरी तहकीक नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक की तहकीक है जो मैंने बराह रास्त उनसे सुनी, और मुशाहिदा भी है। बांग्लादेश पूरा हनफी है, केपीके पूरा क्या है, चंद एक को छोड़कर एलडी से बहुत थोड़े होंगे केपीके में, सारे क्या है? हनफी है। पूरा बलूचिस्तान क्या है? हनफी है, सिवाय चंद एक। पूरा पंजाब क्या है? हनफी है। पूरा कराची क्या है? चंद एक को छोड़कर, चंद मस्जिदें अहले हदीसों की या कुछ दूसरे, बाकी सारे क्या है? हनफी है। पूरा अफगानिस्तान क्या है जो रूस से लड़े और अब भी एक उन्होंने हुकूमत कायम की, वो सारे क्या है? बोलते क्यों नहीं? हनफी है। अज़रबैजान जहां मैं गया हूं हनफी है, ताजिकिस्तान हनफी है, ईरान में जितने सुन्नी है 99% जो सुन्नी है वो क्या है? हनफी है। इधर चले जाओ आप तुर्की, जिसने 500 साल जमीन पे दादागिरी की है, मुसलमानों की क्यादत की है, वो सारे क्या थे? हनफी थे। फिर बर्रे सगीर में जो 1000 साल हुकूमत रही है सब हनफियों की रही है, और ये आज से नहीं है कि अभी से आ गए हो, जब से फिकह हनफी मुरतब 1200 साल से ज्यादा अरसा हो गया। फिर आप चले जाओ मलेशिया, वो सारे शाफी हैं, सारे क्या हैं? शाफी हैं। और थाईलैंड की तरफ चले जाओ, वहां भी जितने कदीम मुसलमान, अच्छा चाइना में जितने कदीम मुसलमान है सारे हनफी हैं। कल चाइना से जमात आई हुई थी, वो बता रहे थे हमारे तो सारे फिकह हनफी। तो ये अब कोई फिरका वजूद में आया है? जब से चाइना में इस्लाम आया है वो क्या है? हमेशा से हनफी है, फिकह हनफी को ही फॉलो कर रहे हैं। मंगोल जो मुसलमान हुए थे, बाज लोग कहते हैं मंगोल हैं, भाई मंगोल तो सारे हनफी हुए थे, सही है ना, जो इस्लाम लाए हैं। हत्ता कि यहां जितने हमारे अहले हदीस हैं इनके भी अब्बा दादा या परदादा, परदादा पे जाके वो सारे क्या हैं? हनफी हैं वो भी। या परदादा नहीं होंगे तो परदादा से ऊपर सारे हनफी होंगे वो भी, ठीक है ना। तो मैं भी ये मुकाबला नहीं कर रहा अहले हदीस और हनफियों का, मैं तो कह रहा हूं अगर आप किसी को हनफियत की बेस पे गुमराह करार देते हो कि ये हनफी है फिरका है और जहन्नम में जाएगा, तो 50% उम्मत कहां चली गई? जो अहले सुन्नत वल जमात में, शिया वगैरह उनको तो मैं अहले सुन्नत में वो भी नहीं अपने आप को दाखिल करते, उनको तो हम दाखिल ही नहीं कर रहे, हम तो अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं। तो अब ये 50% तो ये चले गए कहां पे? और आज से नहीं गए, क्योंकि माजी में जाओगे तो 50% से भी ज्यादा हनफी थे। हनफी फिर सऊदीया में बहुत सारे हनफी हैं, शाम में बहुत सारे हनफी हैं, शाफी भी हैं और हनफी भी हैं। तो ये सारे कहां चले गए मार्केट से मेरे भाई? ये जाएगा जहन्नम में। अब जहन्नम भेजने के लिए बचे हैं शाफी, मालिकी और हम्बली। सऊदी अरब में आज भी 99% उलमा हनफी हम्बली हैं। फिकह हम्बली पढ़े बगैर सऊदी अरब में कोई छोटी सी पोस्ट भी नहीं मिलती आपको मजहबी, दारुल इफ्ता खोलने की इजाजत ही नहीं है। फिकह हम्बली नाफिज है वहां पे, लॉ है वो। के बहुत सारे उलमा कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फिकह हम्बली को छोड़ दिया, लेकिन वो अब छोड़ा है। अब तक किसको फॉलो कर रहे थे? वो फिकह हम्बली को। और अभी मेजॉरिटी फिकह, मैं तो वहां हरम में उलमा के दरसों में बैठा हूं, फिकह हम्बली की किताबें पढ़ा रहे होते हैं वो। आप उनसे पूछो कि आप किस फिकह को फॉलो करते हैं, मुंह से बोलते हैं कि हम हम्बली हैं। हमारे अहले हदीस भाई कहते हैं नहीं वो तो कुरान हदीस कहते हैं। भाई कुरान हदीस और फिकह हम्बली में टकराव थोड़े ही है, ना फिकह हनफी और कुरान हदीस में टकराव है, ना फिकह शाफी कुरान हदीस में टकराव है। बात यह है कि कुरान हदीस में जहां दोनों तरफ दलाइल होंगे तो फिर इख्तलाफ होगा, इधर भी हदीस होगी इधर भी हदीस होगी, इधर भी दलील होगी इधर भी दलील होगी, तो ऐसे मौके पे फिर एक फिका को फॉलो किया जाता है। तो वो इख्तलाफ वो वाला है ही नहीं जो जहन्नमी। लेकिन आपने तो कहा हम्बली, एक ये फिकही को फॉलो करना ही फिरकावारियत है, तो हम्बली भी कहां चले गए? जहन्नम में। शाफी भी कहां चले गए? अच्छा, ये जो वेस्ट है ना, जितना अफ्रीका के जितनी मराकश जहां इस्लाम उंदलुस जहां हुकूमत की है मुसलमानों ने, उंदलुस में कितनी बड़ी हुकूमत थी, इनमें 99% लोग मालिकी हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? आज भी मालिकी हैं। मैं तो मिला हूं जाके, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, फिकह मालिकी को फॉलो कर रहे हैं, वो भी क्या हो गए? जहन्नमी। तो चार या छह आदमी बचेंगे जन्नत में जाने के लिए। तो वही लतीफा याद आता है, और तो हदीसों में तो हम देख रहे हैं कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की जब पूरी आदम से लेके आदम अलैहिस्सलाम से लेके क्यामत तक सफे लगेंगी ना जन्नतियों की, 80 सफे मेरी उम्मत की होंगी। आपने फिरका का एक ऐसा मफहूम बयान कर दिया कि हनफी ये शाफी ये सारे फिरके हैं, तो अब जब फिरके हैं तो ये तो मेजॉरिटी तो इन्हीं को फॉलो कर रही है, तो फौरन आप कहते हैं अक्सरियत को मत देखना, हक कभी भी अक्सरियत के साथ नहीं होता, हक को देखना है चाहे मिनोरिटी में हो। भाई हक को तो देखना है हमने, लेकिन हक की जो आप डेफिनेशन जो एक्सप्लेन जिस तरह से कर रहे हैं उससे मुसलमानों की मेजॉरिटी गलत हो रही है, मिनोरिटी चार आदमी बच जाते हैं उसमें, वो क्या हो रही है सही, और वो भी आज के 100 साल पहले तो बॉसों का वजूद ही नहीं था। अब भी डॉक्टर जाकिर नाइक की तहकीक के मुताबिक, तहकीक तो हमारी भी है लेकिन मैं अपनी इसलिए नहीं पेश कर रहा कि लोग कहते हैं मंजन बेच रहा है, फिर इसलिए मैं डॉक्टर जाकिर साहब का हवाला दे रहा हूं, मुशाहिदा है ये, सिर्फ तहकीक नहीं है। 99% लोग चारों मजाहिब में से किसी एक से वाबस्ता हैं, या तो अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं मैं, बाकी जैदिया इमामिया शिया वो उनको वो एक अलग हिसाब किताब है, अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहा हूं मैं। अहले सुन्नत वल जमात को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि अहले सुन्नत वल जमात वो लोग हैं जो कुरान हदीस और सहाबा तीनों को साथ मिलाते हैं, ऐसी तशरीह नहीं करते कुरान और सुन्नत की जो सहाबा के क्या हो अगेंस्ट, और सहाबा में सबसे बड़ा मकाम खुलफाए राशिदीन को देते हैं, तो खुलफाए राशिदीन के फैसलों के मुखालिफ नहीं जाते, वो फैसले जो बाकायदा नाफिज हुए जिनको सहाबा ने भी माना, तो उन फैसलों की बात कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे भाई ये कुरान और सुन्नत की तशरीह ऐसी कर रहे हो ना, फिरकावारियत के खिलाफ ऐसी तकरीरें कर रहे हो, तो चंद बेवकूफ लोग आपके गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे जिनको तारीख का पता ही नहीं है। तो वही बात है, नज़मों में होता है गजनवी का बेटा मैदान में आ रहा है, भाई गजनवी महमूद गजनवी तो हनफी था, वो भी क्या हो गया, गुमराह हो गया। तुम्हारे पास तारीख में ना कोई मुजाहिद बचेगा ना कोई मुहद्दिस बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं मार्केट में तुम्हारे पास, तो चंद लोग बच जाएंगे। तो हम तो उन चंद को भी दिल बड़ा रख के हम कह रहे हैं चलो कुरान हदीस को किसी भी दर्जे में मानता हो भले हनफी ना हो, हम तो फिर भी उसको जन्नत में ले जाने के लिए हम तो फिर भी जर बड़ा रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो जो कॉन्सेप्ट है ना उससे 99% जो जन्नती थे वो जहन्नम में जा रहे हैं और 1% कहां जा रहे हैं, 1% को तुम जन्नत में लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी इस दौर में, वरना माजी में जाओगे तो 1% भी नहीं मिलेंगे। जैसे इसकी एक मैं मिसाल देता हूं कि अक्सर ये एतराज किया जाता है कि हरम में 400 साल तक चार मुसल्ले रहे हैं, हनफी मालिकी शाफी हम्बली, ये फिरकावारियत नहीं तो और क्या है। इसका मैंने एक जवाब दिया था, मैंने कहा देखो हरम में 400 साल तक चार मुसल्ले रहे, हनफी शाफी मालिकी हम्बली, चारों मकातिब फिकर को हरम में नुमाइंदगी मिली हुई थी, तो इसके तो हम मुत्तफिक नहीं है कि एक इमाम हनफी पढ़ाए फिर शाफी पढ़ाए, भाई जो भी है सब सही है तो कोई भी एक पढ़ा दे, उसमें क्या जा रहा है, ये लेबल लगाने की क्या जरूरत है। और ये 400 साल तक इस पर उलमा का इजमा भी नहीं हुआ कि उम्मत ने इजमाई तौर पर इसको कबूल कर लिया हो, इजमा थोड़ी हुआ है, हो सकता है बहुत से उलमा इसके खिलाफ हो गए यार नहीं एक ही होना चाहिए सबूत, जैसे अब हम्बली है ना, अब हम्बली मुसल्ला है ना सऊदी अरब में, तो हनफी भी उनके पीछे जाके नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, तो हनफी ने ये थोड़ी कहा कि हम्बली क्यों, भाई वो भी अहले सुन्नत है तो ये भी है तो सब ठीक है सब सही है, भाई हनफी हो हम्बली हो हमारी सेहत पे इससे कोई फर्क। सदियों तक हनफियों ने हुकूमत की हरमैन पे, हम्बलियों को इससे कोई एतराज नहीं हुआ क्योंकि वो उनको भी अहले सुन्नत वल जमात में समझते हैं। फिर जब हम्बलियों की हुकूमत आई तो सबसे ज्यादा उलमाए देवबंद ने सपोर्ट किया है सऊदीया को, पता है आपको, शुरू में मुखालफत थी क्योंकि मामला कंफ्यूज था कि ये कोई खवारिश टाइप की कोई बागी तो नहीं है, लेकिन जब मामला क्लियर हो गया कि भाई इनके अकायद दुरुस्त हैं, तो हम्बली होने के बावजूद आपको पता है सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया था उनको, हनफिया ने सपोर्ट किया, उलमाए देवबंद ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी नजर में हनफी और हम्बली में कोई फर्क नहीं है, एक ही मकतब फिक्र है, मसाइल का इख्तलाफ वही है जो सहाबा में भी था। आले सऊद जो फहद बिन अब्दुल अजीज से के दौर तक तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उलमा के, उसके बाद जाके फिर वहां जो भी फसादात हुए और जो भी मामला हुआ, मैं ज्यादा उसकी गहराई में नहीं जाता, कुछ बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई गई। लेकिन उससे पहले तो वो उलमाए अरब जानते ही उलमाए देवबंद को थे, बदरुल मजहूद शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आज भी वहां रखी हुई है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे शेख बिन बाज से, सऊदी अरब के जो मुफ्ती आजम थे। खैर, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो किसी ने भी मुखालफत, लेकिन हरम में जो 400 साल मुसल्ले रहे ना, तो मैं भी उसका कायल नहीं हूं कि नहीं होने चाहिए चार मुसल्ले, एक ही होना चाहिए था जैसे अब है या उससे पहले था। और इस पर सारी उम्मत जमा भी नहीं हुई है। बहुत से हो सकते हैं उलमा कहते हैं भाई एक ही मुसल्ला होना चाहिए, हम सब एक ही पीछे नमाज पढ़ेंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि 400 साल तक अहले सुन्नत वल जमात के बारे में ये समझा गया कि चार ही अहले सुन्नत वल जमात के नुमाइंदे हैं, हनफी मालिकी शाफी हम्बली, लिहाजा इन चारों को वहां जगह दी गई ये बताने के लिए कि जो जन्नती फिरका है ना, जो अहले सुन्नत वल जमात है वो ये हैं, इनको हरमैन की इमामत का हक है। सवाल पैदा होता है पांचवा फिरका मैदान में क्यों नहीं आया जिसने एप्लीकेशन लिखी कि हमें भी हक दिया जाए। दूसरे आए जो अहले सुन्नत वल जमात, शिया हजरात ने भी कोशिश की, जो अहले सुन्नत नहीं मानते अपने आप को, जैदिया इमामिया ये जितने फिरके इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात में पांचवा कोई था नहीं जिसने एप्लीकेशन दी हो। इसका मतलब वो पांचवा था ही नहीं, तो उम्मत गुमराही पे कैसे जमा हो गई फिर? यानी अगर ये चार गलत है, वो पांचवा ठीक है जो इन चारों से हटकर है, तो 400 साल तक तो उस पांचवे का वजूद था ही नहीं। तो जिस चीज का वजूद नहीं था वो बरहक हो सकता है, या जिनका वजूद हरमैन की जिनको क़यादत मिली हुई थी वो गलत है, ये वो गुमराह हैं। जबकि हदीस में आता है कि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, तो जो फिरका था ही नहीं तो वो कैसे बरहक हो सकता है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जो था ही नहीं ना, अगर हालांकि जो नाजी फिरका है, जो निजात याफ्ता है, वो 1400 साल में एक सेकंड के लिए भी मार्केट से शॉर्ट नहीं हो सकता, तो 400 साल तक वो मार्केट से शॉर्ट रहा है। तो 400 साल तक नुमाइंदगी किसको मिली है? इन्हीं को मिली है। और 400 साल पहले भी इन्हीं में से किसी एक को मिली है, 400 साल बाद भी इन्हीं में से किसी एक को मिली है। तो ये जो नए नए फिरके मार्केट में आ रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं कि ये फिरकावारियत का जो मफहूम ये लोग बयान कर रहे हैं उस मफहूम के मुताबिक 99% उम्मत जा रही है जहन्नम में, 4, 6, 8, 10 अफराद कहां जा रहे हैं मेरे भाई? हो सकता है 4000 अफरादों कोई लिस्ट पेश कर दे, 4 नहीं 4000, अब पूरी उम्मत के मुकाबले में 4000 की क्या वैल्यू है यार? ठीक है ना, क्या वैल्यू है? तो इसलिए ये जो दलील दी जाती है ना, अक्सरियत को मत देखो, इस उम्मत में अहले सुन्नत वल जमात में अक्सरियत को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस उम्मत में मेजॉरिटी जन्नत में जाएगी पिछली उम्मतों के मुकाबले में। ये जो कुरान कहता है ना, जमीन में अक्सरियत की इतबा मत करो, ये आयत नबी के दौर के साथ खास है कि उस वक्त अक्सर लोग काफिर थे, तो काफिर कहते थे इस्लाम अगर बरहक है तो इतने सारे लोग तो गलत हैं, तो कुरान ने कहा अक्सरियत की इतबा मत करो। तो नबी के दौर के बारे में है ये, हर जगह ये आयत फिट करने की नहीं है। इस उम्मत में अक्सरियत को देखना पड़ेगा, अक्सरियत गलत नहीं हो सकती, चार आदमी गलत हो सकते हैं। इसकी मैं और आसान मिसाल दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाज़िल होंगे, हदीस में आता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा, अब उस वक्त कोई नया फिरका बनाए तो लोग कहें भाई ये सारी अक्सरियत कुछ अलग बात कर रही है, तुम अलग बात कर रहे हो। वो कुरान कह रहे हैं इन तो थी अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लू कान सबीलिल्लाह, कुरान कह रहे अगर तुम अक्सर लोगों को फॉलो करोगे तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। हालांकि उस वक्त अक्सरियत किस पर होगी? इस्लाम पर होगी, वो पूरी दुनिया इस्लाम पर होगी उस वक्त। तो उसको क्या कहा जाएगा? भाई ये नबी के दौर में नाजिल हुई है, उस वक्त अक्सरियत काफिर थी, तो काफिर लोग कहते थे भाई ये इतने सारे जहन्नम में जाएंगे। उसका जवाब है वाकई जहन्नम में जाएंगे ये, क्योंकि अल्लाह को मानते ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं जो अल्लाह रसूल को सहाबा को मानते हैं, कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, तो वो उनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें अक्सरियत हक पर होगी मेरे भाई। उनमें ऐसा नहीं हो सकता कि अक्सरियत सही है और चार आदमी, अक्सरियत गलत हो और चार आदमी जन्नत में जाएं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर फिर भी किसी के जहन में कोई सवाल है तो भी पूछ ले, क्योंकि मेरा ये क्लिप लोग अधूरा चलाते हैं, और फिर मेरे खिलाफ आजकल खवातीन भी एहतजाज कर रही है कि बजाय फिरके खत्म करने के मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो है ना सही फिरके को फॉलो करो। हालांकि फिरके तो गलत खत्म ही नहीं हो, मैं किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता फिरकों को, आपने सही चीज को बता देना ये सही है, बाकी गलत है। तो जो गलत से छूट कर आना चाहेंगे इधर को आ जाएंगे, जो नहीं आना चाहेंगे उनकी किस्मत में हिदायत है ही नहीं। ये तरीका नहीं है कि सारे फिरके बम से उड़ा दो और एक हम नई चीज मार्केट में लेकर आए हैं, ये है असल। तो आप जो चीज लाए काइंडली आप अपने पास संभाल के रखें। जो सही है वो 1400 साल से चला आ रहा है और वो वही है जो कुरान सुन्नत और सहाबा को फॉलो करते हैं, इजमा को फॉलो करते हैं, इजमा के खिलाफ नहीं जाते। फिर अगर उनमें मसाइल में इख्तलाफ हो भी जाए तो वो सहाबा में भी था मेरे भाई, वो इख्तलाफ की बेस पे जन्नत और जहन्नम के फैसले नहीं होते। बात खोपड़ी शरीफ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? नहीं बैठी तो छोड़ दो, बस जल्दी चलते रहो। अहले हक और अहले बातिल की पहचान, ये रिपोर्ट मैंने पेश कर दी है पूरी अहले हक और अहले बातिल की पहचान के बारे में। और वैसे एक बात आपको बताऊं, कुरान तो जन्नतियों की जो तारीफ करता है, कुरान कहता है लगवियात से बचते हैं, नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, सदकात व खैरात करते हैं, उनके चेहरों पे सीमा हुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, नमाजों का नूर होता है उनके चेहरों पे, वो यतीमों का माल खाते नहीं है, यतीमों पे खर्च करते हैं। कितनी चीजें कुरान बयान करता है। आज जितने जो बातिल फिरके आ रहे हैं ना, उनमें से इन इन अलामतों में से एक भी नहीं। वो किसी एक आदमी को नमाजी बनाया हो ना आप नहीं देखेंगे। हां कोई बेचारा मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गया, उसको टांगे चौड़ी करने, टांगे पतली करने, आमीन आहिस्ता जोर से रफुलदैन करना है नहीं करना है, इन मसलों में जरूर उलझा रहे होंगे। वो तबलीगी जमात का ये काम ही नहीं है रफुलदैन के मसले, वो लोगों को नमाजी बनाते हैं। कितने लोग मस्जिद में आए नमाजी, खुशू खुजू रो रहे हैं नमाजों में, कोई टकर गया उनको, तो रफुलदैन कर रहा है नहीं करना चाहिए, उसको उलझा दिया, और वो नहीं कर रहा था तो करना चाहिए, उसको इस मसले में उलझा दिया, खुशू खुजू गया तेल लेने, समझ रहे हो? वो हर वक्त यूट्यूब पे भी यही मंजी ठोक दी, चैनल फलाना कर दिया, और जनाब मैं यूं कर दिया, फलाना कर दिया। तो कुरान तो अहले जन्नत की अलामत क्या बता रहे, नमाजों में क्या करते हैं, खुशू भले रफुलदैन से करें, भले बगैर रफुलदैन के करें, अल्लाह को इससे गरज नहीं है कि यूं करके कर रहे हो, बगैर तू मेरी तरफ मुतवज्जे है नमाज में, तेरा तू दिल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, तेरी नमाज तेरा मुझसे ताल्लुक बहाल कर रही है कि नहीं कर रही। तो इन स्कॉलर्स में आपको ये चीज नजर नहीं है। आपको पता है सहाबा में नमाज के बारे में जो इख्तलाफात थे ना, वो आज के इख्तलाफात से ज्यादा हैं। इतने इख्तलाफात कम हुए हैं अभी, पहले ज्यादा इख्तलाफ थे। एक सहाबी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजों में भी कितनी रिवायतें मिलती है, कोई यहां बांध रहा है, कोई यहां बांध रहा है, कोई यहां बांध रहा है, कोई जोर से आमीन, कोई आहिस्ता आमीन, रो सब रहे हैं नमाजों में यार, सारे रो रहे हैं नमाजों के अंदर, ऐसी ऐसी नमाजें पढ़ रहे हैं वो। तो मगर आज आप देख लो यार, कैसे कैसे ऊटपटांग किस्म के चैलेंज हैं। और वो वजह उसकी ये थी कि वो समझते थे भाई इनके इनका इस्तेदलाल इस हदीस से है। अब्दुल्ला बिन अब्बास को किसी ने शिकायत की हजरत मुआविया के बारे में कि एक रकत वितर पढ़ते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय एक रकत वितर की नहीं थी, हजरत मुआविया की राय थी कि एक रकत वितर है, मेरी राय कि एक रकत वितर नहीं होते, इसमें दलाइल है मेरे पास, कभी मैं मसला रिकॉर्ड करवाऊंगा। जो हमारे अहले हदीस कहते हैं ना युतिरु बिवाहिदतिन, एक रकत वितर पढ़ते थे, उसका ये मतलब नहीं है हदीस का मतलब। लेकिन अगर कोई एक रकत का कायल है तो मैं अपनी राय उस पर जबरदस्ती ठोसूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बाद सहाबा एक रकत के कायल थे, मैं ठोसूंगा नहीं, मैं अपना मौकिफ बयान करूंगा मजबूत लहजे में। मैं ये कहूंगा कि मुझे अगर आप समझ रहे हो कि मैं कुरान हदीस नहीं जानता या मैं अंधी तकलीद कर रहा हूं, यह आपका इल्जाम है भाई। हमें पता है अबू हनीफा बहुत आगे की चीज थे वो, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा तहकीकात की है, जहां तक आप पहुंचे नहीं हो। अब आपको अबू हनीफा की फिरासत का और इल्म का पता नहीं है तो आप उन पर एतराजा शुरू कर दे, तो उन्होंने हदीस के खिलाफ फतवा दिया, साहिबैन ने हदीस के खिलाफ फतवा दिया। तो सहाबा में भी इख्तलाफ था, एक रकत वितर के कुछ कायल थे कुछ कायल नहीं थे, लेकिन दोनों को यह पता था कि भाई दोनों की नीयत अल्लाह रसूल को फॉलो करना है, लिहाजा दोनों ने एक दूसरे की राय का एहतराम किया। आज की जो मुतशद्दिद देवबंदी हैं वो जैसे अहले हदीसों पे रद कर रहे होते हैं, मुतशद्दिद अहले हदीस देवबंदियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये सहाबा इनकी तरह नहीं थे, इनकी तरह नहीं थे, बल्कि सहाबा ने क्या किया, ये मसले को आराम से हल किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास को जब बताया गया कि मुआविया एक रकत पढ़ते हैं, फरमाया दाहू फइन्नहु फकीहुन, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, वो फकीह है, वो अपनी राय को परअमल कर सकते हैं। यानी गोया बज़माने हाल कहती है भाई मैं जो तुम्हें बता रहा हूं तुम उसको मानो, बाकी वो क्या कर रहे हैं वो अल्लाह जाने, ठीक है ना। उनके पास एक कोई रिवायत पहुंची होगी या उनकी राय ये होगी, युतिर बिवाहिदतिन इनके यही मतलब है। कितने आराम से सहाबा ने मसला हल कर दिया कि नहीं कर दिया, तभी तो पूरे पूरे मुल्कों के मुल्क फतह कर लिए उन लोगों ने, ऐसे रूम और फारस की बखिया उधेड़ के रख दिए, क्योंकि उनकी सफों में कोई रफुलदैन कर रहा था कोई नहीं कर रहा था, कोई हाथ बांध रहा था कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा था, اور جس کو جس عالم پر اعتماد ہوتا اس پر عمل کرتا, کوئی چیلنج مناظر بازی اگر وہ کہتے نا کہ نہیں بھائی زور سے آمین ہے یا آہستہ آمین ہے, پہلے یہ منجی ٹھوکوں گا تو روم اور فارس نے مسلمانوں کی منجی ٹھوک دینی تھی. محمد بن قاسم پھر سندھ فتح نہیں کرتا, محمد بن قاسم کی منجی ٹھک چکی ہوتی اب تک, تو اس لیے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے. پھر سائنس کی دنیا میں نام پیدا کیا مسلمانوں نے, کہا یار یہ مسائل حل ہو چکے ہیں. پھر چاروں اماموں نے آ کے تو بالکل ہی ختم کر دیا یہ مسائل, انہوں نے فقہ کو مرتب کر دیا, ریٹرن فارم میں لے آئے, امت پوری اس پہ جمع ہو گئی, بھائی اب یہ ریٹرن میں ہے, اب اسی کو فالو کرو, اب دائیں بائیں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے تو پھر حکومتیں اسی فقہ کو نافذ کیا, حکومتوں نے کہیں فقہ حنفی نافذ ہوا, کہیں شافی نافذ ہوا, جہاں فقہ شافی نافذ ہوا حنفیوں کو اعتراض نہیں ہوا, جہاں فقہ حنفی نافذ ہوا شافیوں کو اعتراض نہیں ہوا, ایسی زندگی گزرتی رہی. اب 1500 سال کے بعد جا کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بہت غلط ہوا, امت نے 1200 سال بہت امت کا ٹائم ضائع کیا, بلکہ قرآن حدیث ہم اب بتائیں گے, یہ حدیث نمبر ہے, نبی نے رفع الیدین کیا, جو نہیں کرتا وہ کیا ہے, وہ گمراہ ہے, اور جس نے جو رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے انہوں نے کہا یہ اس کا جواب ہے, جس نے کیا تو وہ کیا ہے, گمراہ ہے, وہ اندھا مقلد ہے, وہ مقلد ہے. جو منجیاں ٹھک رہی ہیں ایک دوسرے کی منجیاں ٹھوک ٹھوک کے سبھی ٹھک گئے ہیں ماشاءاللہ, سمجھ رہے ہو, لیکن ہمارے سیکولر اور لبرل قوتوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے, بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں, ان کو پتا ہے کوئی مذہبی اسکالر ہمیں دیکھ کے کبھی نہیں کہے گا پردہ کرو, کیونکہ وہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہے گا نا ٹانگیں چوڑی ہیں تو کہے گا پتلی کر, ٹھیک ہے نا, جو پتلی کرے گا چوڑی کر, یہ چل رہا ہے ان کیا الحاد پھیل رہا ہے, خدا کا انکار کرنے والے لوگ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے بین الاقوامی پالیسیاں بن رہی ہیں, منجیاں سب کی مل کے ہماری ٹھک رہی ہیں, اور ہم ان مذہبی اسکالر سے جان چھوڑانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو سنتے اسی بیس پر ہے کہ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو حق بیان کرتا ہے, حالانکہ لوگ آپ کو پوری امت سے کٹا رہے ہیں. محمود غزنوی کو ڈاکو قرار دے دیا یار, محمد بن قاسم کو ڈاکو قرار دے دیا, تمہاری تو منجی ویسے ہی ٹھک گئی میرے بھائی. جو ہمارے ہیروز تھے طارق بن زیاد, جو اندلس کی 1000 سال کی حکومت طارق بن زیاد جو جا کے فرانس تک پہنچ چکا تھا طارق بن زیاد, سمجھ میں ہری بات کہی, پورا یورپ فتح ہو گیا تھا تقریباً, پورا تو نہیں اس وقت تو یہ آبادی بھی اتنی نہیں تھی, پھر یہ سندھ میں ادھر ایک طرف سے ادھر ہندوستان فتح ہو رہا ہے, ہندوستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا, تو جتنے بڑے بڑے ہمارے لیڈر تھے وہ سارے ڈاکو بنا دیے, تو منجی ٹھک گئی کہ نہیں ٹھک گئی, سارے کیا ہو گئے بھائی, سارے ہی غلط ہو گئے, تو 4-6 آدمی رہ جائیں گے میرے بھائی, 4-6 آدمی چلے جائیں گے بس باقی رہ جائیں گے, وہ 4-6 آدمی کون ہے وہ میں نام ایک بیان میں بتا چکا ہوں, دوبارہ میں ریپیٹ, اغامدی صاحب تو ان میں سر فہرست ہیں, کیونکہ وہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف اس معیار پہ یہی اترتے ہیں, ان کے علاوہ وہ تو ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اس کے حساب سے تو ان کے علاوہ سارے کیا ہیں, گمراہ ہیں. ابو حنیفہ بھی گمراہ ہیں جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی رجم کیا جائے گا عورت کو, سب کی یہی رائے ہے نا کہ جو مرد عورت اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم ہے, انہوں نے کہا کہ رجم وجم کچھ نہیں ہے بھائی, یہ قرآن کی یہ غلط تشریح کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں, یہ حدیث کو تو پھر اپنے حساب سے وہ کانٹ چھانٹ کے لے آتے ہیں کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہونا کہتے ہیں یہ حجت ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, وہ پھر ان کی لمبی ڈیٹیل ہے, وہ ایک ایسا اسلام لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اس پہ وہی پورے اترتے ہیں بھائی, تو وہ اکیلے اور ان کا ایک داماد ہے, میرا شاگرد ہے داماد, کمال کی بات ہے, تو وہ جائے گا اور وہ جائیں گے 2 آدمیوں کے علاوہ, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ 4-6 بچتے ہیں اس میں, غنیمت ہے 8-10 4-6 اس میں آ رہے ہیں, باقی تو جو پیش کیا جا رہا ہے بھائی وہ آپ کے سامنے. تو یہ فرقواریت کے جو لیبل ہے نا کہ ہم فرقواریت کے خلاف ہیں, لیبل بہت اچھے سے لگ رہے ہیں, فرقواریت اس سے کم نہیں ہو رہی, مزید فرقے اس سے بن رہے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو آ جاؤ اسی پر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اسلام. ہاں بدعت کو اپنے پاس راستہ نہ دو, بدعتیں نہیں ہیں اسلام میں, کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے 40واں کرتے تھے, میرے چاچا بھی, تو صدیوں سے کوئی بدعت نہیں چلی آ رہی, بدعت کچھ دن چلتی ہے چینج ہو جاتی ہے, صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے, بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے, کہ ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے, اگلے سال اور چینج ہوگا, 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہے, تو بریلوی علماء خود بیزار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ معین اختر کہتا ہے میرے ماموں نے پولیس والوں کو ایسی ایسی گالیاں دیں पुलिस वाले ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियां दी, पुलिस वाले कह रहे थे यार ये वाले पार्ट्स तो हमें पता ही नहीं कि कौन से पार्ट्स हैं। तो हमारे जो ये जो हमारे यहां जो बरेलवी उलमा है वो खुद परेशान हो रहे हैं यार ये वाली तो और ही पब्लिक हमसे भी चार हाथ आगे निकल गई, तो नई नई चीजें आ रही हैं। तो आप कोई बात नहीं भाई, अभी आप देखें आगे आगे होता क्या है। बाकायदा अभी माइकल जैक्सन जैसे डांस शुरू होने वाले रबी अव्वल में, अभी तो रिवायती नाच गाना हो रहा है जो 400 साल पहले जो मुसलमान नाचते थे जिस तरीके से, जो इंडियन फिल्मों में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में जो डांस होते थे अब वो वाले हो रहे हैं। लेकिन ये भी इर्तकाई मराहिल से ये गुजरेगा, आप देखेंगे 100 साल बाद जो रबी अव्वल डांस होगा लोग माइकल जैक्सन को भूल जाएंगे। तो बिदत की एक जगह पांव टिके हुए नहीं होते, वो हर दफा क्या होती है। और भी बरेलवी उलमा खुद हैरान है, बोले ये क्या हो रहा है, मुफ्ती मुरीद साहब के बयान नहीं आते यार ये तो इन्होंने बहुत कर लिया। भाई बात यह कि जब आपने एक ट्रैक पे डाल दिया है तो फिर वो हर साल उसमें, जब आपने लड्डू खिला दिए तो केक भी कटेगा, लड्डू जायज है केक हराम है, इसकी क्या दलील है। बर्थडे तो मना ली ना आपने, जब हलवा हो गया तो लड्डू होगा, लड्डू हो गया तो रसगुल्ला होगा, रसगुल्ला होगा तो गुलाब जामुन होगा, गुलाब जामुन होगा तो जलेबियां भी होंगी, फिर खुशी में हार भी होंगे, फिर गुसल भी होगा, फिर नए कपड़े भी होंगे, फिर उसके बाद डांस भी होगा, नाच भी, पहले नाच होगा रिवायती नाच, फिर रिवायती नाच में वो लोग बोर हो जाते हैं, कहते हैं ये वाला नाच तो हमने पिछले साल भी देखा है, तो वो नाच में चेंजिंग होगी, फिर और चेंजिंग होगी, फिर मजारों पे भी यही हो रहा है। इस्लाम में हुक्म ये है जो नबी से साबित है और आज तक चला आ रहा है, जो जो भी जो बिदत से बचते हैं उनमें ये है कि भाई जो मर गया उसको दफनाओ, पक्की कब्र ना बनाओ, ना कब्रों पर फूल डालो, कुछ भी नहीं, आराम से एक बालिश कब्र, सीधे सादा, दुआ करो, पतली गली से निकलो और सारी जिंदगी उसके लिए दुआ करते रहो। आपका बाप दादा है तो कब्र की ज़ियारत भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं, जैसे नबी ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की, अम्मा है उनकी कब्र की, बस इससे ज्यादा वहां करना कुछ नहीं है। तो हमारे अकाबिर इसी पे चले आ रहे हैं, आज हमारे शेख की कब्र देखो, मेरे वालिद साहब की कब्र सादा मिट्टी की कब्र, मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद की कब्र सादा मिट्टी की कब्र, लेकिन आपने क्या किया, कब्रों को प्रोटोकॉल देना शुरू किया, तो अब उस प्रोटोकॉल की कोई इंतहा नहीं है। पहले चादरें चढ़ाई, फूल डाले, तो अब अगले साल आदमी बोर हो जाता है कि ये तो सबकी कब्रों पर फूल हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इन पे फूल नहीं, इन पे गुलाब का अर्क भी डाला जाएगा, ये आम मैयत नहीं है। फिर ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, तो हर एक की कब्र पक्की हो जाती है, फूल डालते हैं, इन पे थोड़ा सा संगमरमर लगेगा। तो होते 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 फिर मजार बन रहे हैं, फिर कव्वालियां हो रही हैं, फिर धमाल हो रहे हैं, फिर अब जो इस चीज को बिदत नहीं समझते थे वो भी हैरान है, यार ये तो हमारे हाथ से मामला क्या हो गया, निकल गया। तो भाई अब अगले साल तवाफ भी होगा, फिर अगले साल सरदे भी होंगे, क्योंकि बिदत के पांव नहीं होते, टिकती नहीं है, सुन्नत टिकती है। सुन्नत जो सदियों से चली आ रही है, कब्र एक बाल इससे ऊंची नहीं होगी, पक्की नहीं होगी, कोई हार फूल डालने की जरूरत नहीं है कब्र के ऊपर, कोई हर साल मेला ठेला और जो है ना, जैसे सऊदी अरब में देखो ना, बादशाह की डेथ हुई है सऊदी अरब में, फ्रांस या पता नहीं जर्मनी का पादरी मुसलमान हो गया था, उसने कहा यार अपने बादशाह की तजहीज और तकफीन इतनी सादा, गुसल दिया, कफन दिया, दफन खत्म, ठीक है ना। और मलका बरतानिया की भी डेथ हुई थी, उसके प्रोटोकॉल में 8-10 बंदे मर गए होंगे, इतना उसको प्रोटोकॉल, इतना। तो हमारे पास सुन्नत है भाई मैयत का, बस इतना प्रोटोकॉल, गुसल, कफन, जनाजा, दफन, एंड। ना कोई बरसी, ना कोई तीजा, ना कोई 40वां। अब लोग कहते हैं मर्दिया मर्दूद, ना फातिहा ना दुरूद, ऐसी की तैसी भाई, हमने अल्लाह को जवाब देना है, जो अल्लाह रसूल ने तरीका बताया उससे आगे हम जा नहीं सकते। तो सुन्नत 1400 साल से एक ही है, बेदत में हर साल क्या होती हैं, चेंजिंग, मजारों के स्टाइल चेंज हो रहे हैं, फिर कव्वालियां भी एक एक सुन के लोग, फिर नया आता है, फिर बिल आखिर फूंको वाली सरकार पे आके मामला क्या होता है कि कोई इंतहा नहीं है ना। हमने बोला भाई बुजुर्ग इंसान होते हैं, कुछ कोई उनके पास ताकतें नहीं है। बुजुर्ग का मतलब है गुनाहों से बचता हो, उसकी मजलिस में बैठो तो अल्लाह की याद आती हो, गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा होता हो, इट इज कॉल्ड बुजुर्ग। 1400 साल पहले भी बुजुर्ग की ये डेफिनेशन थी, आज भी यही है, कयामत तक ये रहेगी। लेकिन जो बिदत को फॉलो करेगा वो कहेगा यार ये तो नॉर्मल, ये तो सारे, ये मेरा शेख भी वैसे ही निकला जैसे वसीम भाई थे, ठीक है ना, ये भी दो पराठे खा रहा होता सुबह बैठ के, हमारे अब्बा भी दो पराठे खाते थे और तहज्जुद पढ़ लेता है, दुआएं मांग लेता है, तो ये क्या बुजुर्ग क्या हुआ ये, अरे यही बुजुर्ग है और क्या है, और तुम्हें क्या चाहिए, बुराइयों से बच रहा है, इसके पास तजर्बा है, लोगों की इसलाह कर सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, इल्म है इसके पास, इट इज कॉल्ड बुजुर्ग। इसके अलावा और कोई बुजुर्ग नहीं होता, सदियों पहले भी ऐसे ही होते थे, अब भी ऐसे ही होते हैं। कभी कभार अल्लाह किसी के हाथ पे कोई करामत जाहिर कर दे तो वो अल्लाह की मर्जी है, वो तो अल्लाह का काम है ना, हो जाता है बाद बुजुर्गों के हाथ से कोई करामत हुआ तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है। लेकिन जिसने सुन्नत पे इक्तिफा नहीं करना ना, उसको बुजुर्ग मार्केट में डिफरेंट किस्म का चाहिए कि मेरे पीर जो है ना वो कोई अलग ही डिफरेंट, वो गंजे के सर पे हाथ रखे फौरन घास हो गए, बाल तो सबके सर पे उगते हैं, इनके सर पे घास हो गए, आलू प्याज टमाटर हो गए। ये शादियों की बातें कभी ना करें, शादियों की बातें बुजुर्गों पे सूट बोलो नहीं करें, और ये यूं ना करें, ये यूं ना करें, ये ऐसे ना करें, ये चले तो पता नहीं फरिश्ते पर बिठाना शुरू कर दें, ये बकरी ना खरीदें या शॉपिंग ना करें, ये निहारी ना खाएं, तो ये जो बिदती लोग होते हैं ना इनके लिए बड़ी टेंशनें होती हैं, क्योंकि इनको अपने आप को बुजुर्ग साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें चार शादियों के बाद भी बुजुर्ग लोग मान रहे हैं, मैं नहीं कहता मैं बुजुर्ग हूं, लोग मान रहे हैं जो अपने भी, तो आप अकीदत में बैठे हुए, चार शादियां भी हो गई, बच्चे भी दबा के माशाल्लाह हो रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, बता बता के खाता हूं पराठा खाता हूं, निहारी भी फोड़ रहा हूं। तो जो हमारे नजरिए को फॉलो करते हैं वो कहते हैं फोड़ लो यार क्या जा रहा है भाई, मुफ्ती साहब भी इंसान है, पराठा खाने अपने खर्चे पे चोरी की तो नहीं खा रहे ना पराठा, निहारी खा रहे अपने मजे। तो हमारे यहां कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप बिदत को फॉलो करते हो ना तो भाई बुजुर्ग साबित करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बुजुर्ग ना काला चश्मा लगा सकता है धूप में, ठीक है ना, कहते तो शो मार रहा है, ठीक है ना, मेरा एक व्लॉग आया चश्मा लगाया हुआ है मैंने, इतनी शदीद धूप पड़ रही थी ना आंखें खोली नहीं जानी थी, मजबूरन लगाया, और मैंने कहा लोग बोलेंगे मौली साहब को क्या हो गया, उसने कहा लोगों को छोड़ो मौली साहब धूप हो रही है आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा फिर उसमें लोगों ने तस्वीरें मेरे स्टाइल आ रहे हैं ना यूं करके, वो लोगों ने डाली है भाई वो मैं नहीं डाल रहा, ये काम उलमा पे सूट, ये स्टाइल मारना मेरे कहीं भी स्टाइल की जो तस्वीरें या वॉकिंग आ रही है ना वो मेरी नहीं है, वो लोगों ने छुप के बनाई है, कहीं आ रहा है मैं यूं यूं करके जा रहा हूं ऐसे यूं, कहीं आ रहा है मैं यूं देख रहा हूं, वो खुदा की कसम मेरी नहीं है और मुझे बुरी लगती है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है ये अमल, ये फंकार अदाकारों के एक्शन है, ये उलमा पे सूट नहीं करते, इतने भी सादा यानी इंसान ना गिरे कि वो शो मारने शुरू कर दे, लेकिन ये लोग मेरे उससे कहे बगैर बना रहे होते हैं। ये जो मैं बादशाही मस्जिद गया हूं ना तलवारें लेके चिच, ये उन लोगों ने मुझे बहुत पीछे पड़े, मुझे बुरा लग रहा था कि यार छोड़ो मुझे आराम से, उन्होंने कहा नहीं आप आए, फिर उनका दिल रखने के लिए मैं गया वहां पे। तो भाई हम तो बुजुर्ग बुजुर्ग हैं भी नहीं, सीधी सी बात है। तो जो जो बिदत को फॉलो नहीं करते उनके लिए दीन बहुत आसान, कोई मर जाए तो भी बड़े आराम से मर मरा जाए, दुआए बोलो हा हा टा चलो भाई निकलो खत्म हो गया सेटअप। लेकिन मैं आप अच्छा हमारे नमाज पढ़ाना बहुत आसान है। अब देखो मैं सुन्नतें घर पे पढ़ूं या मस्जिद में आके पढ़ूं मेरी मर्जी है, फिर मैं आए नमाज के वक्त आया सलाम फेरा, क्योंकि सलाम के बाद नबी से सही हदीस है, हजरत आयशा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंत सलाम के बगैर बैठते थे उसके बाद खड़े हो जाते थे, तो हम ये करते हैं अल्लाहुम्मा अंत सलाम पढ़ा उसके बाद पतली गली से निकल गए, मर्जी यहां सुन्नतें पढ़े, मर्जी घर जाके पीछे से कोई ओए ऐसे आवाज नहीं देता, वो तनख्वाह ले रहे हो कम से कम 25 मिनट तो बैठो यहां पे, उठे और निकल लिए। भाई हम तो वो कुरान और सुन्नत में जो है वो उसी यही है, इतना ही है बस, इमाम नमाज पढ़ाएगा उसके बाद इमाम और मुक्तदी का रिश्ता खत्म। लेकिन अब आप अगर बिदत को फॉलो करते हो इमाम पहले आके मुसल्ले पे बैठा होगा, तनख्वाह उतनी मिल रही है जितनी हमें मिल रही है, जिम्मेदारी क्या है डबल, पहले आके बैठेगा, कद कामती सलाह पे सबके साथ वो खड़ा होगा, फिर उसके बाद वो लंबी दुआ कराएगा इज्तिमाई दुआ सलाम के बाद, या अल्लाह फलाना डिमका इज्तिमाई होगी, फिर इसमें उसके बाद फिर वो सुन्नतें भी वही पढ़ेगा, क्योंकि उनके यहां सुन्नतों के बाद भी दुआ होती है, अगर इमाम चला गया लोग दुआ कराए बगैर भाग गया तो सुन्नतों के बाद अलग दुआ कराएगा, या तो उसकी तनख्वाह डबल करो मेरे भाई, तनख्वाह उतनी मिल रही है जितनी देवबंदियों को मिल रही है, काम उसका क्या हो रहा है डबल काम लिया जा रहा है। तो और अब पता नहीं, और फिर उसको हर तीजे में भी जाना है इमाम को, हर 40 शुरू में तो बड़ा मजा आता है कि तीजे में भी बिरयानी 40 में भी बिरयानी, लेकिन मरने वाले तो तादाद जब बढ़ती जा रही है, आबादी इतनी बढ़ गई है, तो कभी आज उसका तीजा है आज उसका 40वां है आज उसका बरसी है, हम तो मानते ही नहीं स्वयं चिल्ले को और बरसी को और 40वें को, तो लोग हमें तंग ही नहीं करते ना, तो इसलिए हम बड़ हंसी खुशी नहीं गुजार रहे हैं। लेकिन जो मानते हैं तो इमाम साहब बेचारे की जिम्मेदारी उसके तीजे में नहीं गए तो वो नाराज, उसके 40वें में नहीं गए, उसकी पैदाइश में भी जा रहे हो, मरने में भी जा रहे हो, चिल्ले में भी जा रहे हो, तीजे। मैं तो मुर्दों को भी गुसल नहीं देता, एक दफा मेरे पास आए लोग मुर्दे को गुसल दे, मैंने कहा भाई मैं तो मुर्दों को गुसल देने वाला लग रहा हूं तुम्हें क्या, कह रही मुफ्ती साहब आप आलिम हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सुन्नत के मुताबिक आप गुसल दे सकते हैं, हमें सुन्नत के मुताबिक गुसल देना नहीं आता। मैंने कहा आप खुद जब नहाते हो
खुद जब नहाते हो तो सुन्नत के मुताबिक गुसल करते हो या नहीं करते? अगर नहीं करते बिलफर्ज, तो कभी मेरे पास आया कि साहब मुझसे तो गुसल फर्ज हो गया है, मुझे सुन्नत के मुताबिक गुसल करना नहीं, मुझे नहला दो। मैं आपको जवाब, मैं तुझे नहलाने वाला लग रहा हूं? या आप आओ कि मुन साहब सुन्नत के मुताबिक बगले साफ करना। बगल का भी एक सुन्नत तरीका है साफ करने का, नफुल आना हदीस में आता है, उखाड़ा जाए। तो अब उखाड़ने में लोगों को तकलीफ होती है, एक खास तरीका होता है जिससे उखाड़ो तो तकलीफ नहीं होती। अब आप मेरे पास आए, सब मेरे मामू की बगले उखाड़ दें आप काइंडली। मैं कहूं मैं क्या बगले उखाड़ने वाला, मैं कोई नाई हूं। आपको देखें, आप सुन्नत के मुताबिक उखाड़ेंगे, आप मुफ्ती हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप सुन्नत पे अमल करें। मैं कहूंगा मैं तुम्हें सुन्नत तरीका बता दूंगा, बगले तेरे बाप की मैं नहीं उखाड़ूंगा, तेरा मामू हो तेरा बाप हो। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह जब कोई मेरे पास, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आते ही नहीं लोग, पहले आते थे ना मैयत को गुसल देने, मैं कहा मैं क्यों गुसल दूं भाई, तुम खुद गुसल दो अपने बाप को अपने रिश्तेदारों को। तरीका नहीं आता, मैं तरीका बता दूंगा, ये बहश्ती ज़ेवर पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है सुन्नत तरीका, नेट पे आप कल सर्च कर लो, उस पर लिख जाएगा, मिल जाएगा सुन्नत तरीका क्या है, ये मैं बता दूंगा। गुसल मैं थोड़ी गुसल दूंगा। लेकिन बाज बेचारे मौलवी इतनी टेंशन में है कि वो समझते हैं, उन्होंने इतने लोगों को फजाइल बताए ना, मैयत को गुसल देना बहुत सवाब है, इतने उन्होंने हर जुमे में तकरीरें की, अब मैयत हो जाती है लोग कहते हैं आओ ना बहुत सवाब है। वो बेचारे कभी उस मुर्दे को, आदमी मुर्दे को गुसल दे उस रात पूरी तरह से नींद नहीं आती उसको। थोड़ा सा मुर्दा हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल आम लोगों की बात कर रहा हूं। हमने तो इतनी मैयतें देख ली हैं कि इसमें अब खौफ खत्म हो गया है। तो अच्छा, लोग ये भी खौफ से याद आया, लोग ये भी कहते हैं मौत का खौफ है मुफ्तियों को, गार्ड लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल है। मौत का खौफ क्या है? ये नेचुरल है। किसी का बाप भी इस कायनात में ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसको मौत का खौफ ही ना हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप कह सकते हो शहादत के बाद तो जन्नत मिलती है, मिलती है, लेकिन पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा। राहत अंधोरी का शेर है कि तू खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। उससे पहले मौत का एक प्रोसेस है, बड़ा डेंजरस है, उससे हर इंसान डरता है। हां, दीनदार लोगों में कम खौफ होता है, दुनियादारों में ज्यादा होता है, क्योंकि दीनदार को एक तसल्ली होती है यार, एक तकलीफ है ठीक है, लेकिन उसके बाद अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि राहतें मिले। लेकिन खौफ होता है, हमने बड़े बड़े बहादुरों को देखा है कि उनको खौफ हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा लाठी को फेंके, वो सांप बन गई, हालांकि अल्लाह मूसा को कलीमुल्लाह को पता था अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह तो खैर ख्वाह है ना। कुरान के अल्फाज हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फरार हुए, वलम युअक्किब, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, ऐसे भागे हैं ना। कितने मजबूत दिल के थे ना मूसा अलैहिस्सलाम, कितने मजबूत दिल के थे। लेकिन कुरान के अल्फाज हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फरार हुए, वलम युअक्किब, अल्लाह इतना ही बता देते कि भाग गए, बस काफी था ना, अल्लाह ने भी पूरा नक्शा खींचा, फरमाया वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने। इतने बहादुर थे कि इतने बहादुर ना होते तो अल्लाह फिरौन के पास डायरेक्ट भेजता आपको। और कितने मजबूत के एक मुक्का लगाया, बंदा ही मर गया। के बावजूद जब सांप देखा ना तो फरार हुआ। अब वहां कोई बिदती बैठा होता या कुछ, जो आजकल जो बेवकूफ लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं, ये देखो ये कलीमुल्ला खुद मखलूक से डर रहे हैं सांप, और वो सांप भी वो जिसको अल्लाह ने सांप बनाया, मखलूक से डर रहे हैं, और हमें कहते हैं सिर्फ किससे डरो, अल्लाह से डरो। ठीक है, कोई बैठा होता तो ये एतराज करता, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते, भाई हम अल्लाह से डरते हैं लेकिन ये सांप भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने किया है, इसमें काटने की सलाहियत भी अल्लाह ने रखी है, डसेगा तो मौत का भी खतरा है, तो ऐसे थोड़ी मर जाए, पहले तकलीफ होगी भाई, जहर अंदर जाएगा। यहां उलमा ने एक इश्काल उठाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने कहा था कि सांप, ये मैं सांप बना रहा हूं, तो फिर डरने का क्या हो भाई? बात यह कि तबई चीजें हैं, ये तबई चीजें, नेचुरल है। अल्लाह के कहने के बाद भी डर लग रहा होता है आदमी को। अल्लाह ने वादा किया था नबी से बदर में कि फतह होगी, इसके बावजूद नबी को खौफ था, आप सर्दे में दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह ये चंद लोग शहीद हो गए तो इस्लाम तो नाम खत्म हो जाएगा। ये तबीयी चीजें हैं, नेचुरल हैं। नहीं डर लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की खोपड़ी काम नहीं कर रही। तो ये सब, ये जो तो कहता ना नहीं डरता मैं, तो लाओ मैं पटाखा फोड़ूंगा उसके पास, फिर देखो कैसा उछलता है 2 फुट। बाकी ये कि दीनदार लोग, मौत का डर तबीयी हर एक में होता है, उसके बावजूद भी जहां हक की खातिर जान देनी पड़ती है तो खौफ के बावजूद जान दे देते हैं, डरते हुए दे देते हैं जान, लेकिन देते हैं, पीछे नहीं हटते। जैसे मैदान जिहाद में सहाबा कराम मौत का तो उनके दिल में भी खौफ था, इसके बावजूद वो इस खौफ के बावजूद पीछे नहीं हटते थे, सिवाय गज़वा उहद के, एक दफा हुआ फिर अल्लाह ने वो गलती भी माफ कर दी, वरना वो पीछे नहीं हटते थे। तभी हदीस में आता है इस खौफ की वजह से मुजाहिदीन के गुनाह माफ होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, इसके बावजूद भी वो डटा हुआ है। अगर खौफ ही ना हो तो कुर्बानी किस बात की हो गई मेरे भाई। तो लोगों ने ना बहुत अजीब अजीब ऊट पटांग किस्म की चीजें रखी, तो बहुत से लोग मुफ्ती साहब मौत से डरते हैं, देखो गाड़बड़ रखे हैं, मुझे ख्याल है, मैं लिखूं हाँ डरता हूं। तो मैंने आज तक कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं देखा जो बिल्कुल भी डरता ना हो। अभी अल्लाह ना करे कहीं पटाखा फूट जाए, गोली चढ़ जाए, देखो सारे लेटेंगे, लेटे हुए होंगे यहां पे बचने के लिए, और सबसे पहले मैं लेटा पाऊंगा, क्योंकि मुझे डर होगा कि ये मेरी वजह से ही, क्योंकि ज्यादा तो मुझे ही हदफ बनाने की कोशिश की जाएगी। तो मैं तो जब नमाज पढ़ा रहा होता हूं ना, तो मैं ये देख रहा होता हूं कि अगर कोई दहशत, क्योंकि दहशतगर्दी के खतरे तो होते हैं उलमा को, मैं बहुत होशियारी से देख रहा होता हूं, कोई भी मशकूक हरकत हुई ना, सामने कोई राइफल, कोई अजनबी बंदा आया, तो सबसे पहले मैं लेट जाऊंगा यहां पे, मैं लेट जाऊंगा। तो लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब डर गए, मैं बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह डर गया, क्योंकि नहीं डरा होता ना तो मार्केट से शॉर्ट हो चुका होता है। ये एहतियात फर्ज है। एक वीडियो वायरल हुई कुछ दिन पहले, चंद साल पहले, जलजला आया हुआ, लोगों ने कहा इमाम साहब का तकवा लिल्लाहियत देखो, जलजला आ रहा है, मुक्तदी एक एक करके ना खिसक रहे हैं, इमाम खड़ा हुआ बेचारा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोग कह रहे हैं इमाम साहब का तवक्कुल देखो, मैंने कहा ये तवक्कुल नहीं है, ये परले दर्जे की हमाकत है, क्योंकि जब छत गिरेगी ना तो वो नहीं देखती इमाम कौन है मुक्तदी कौन है, इनमें कितनी रकतें हुई थी कितनी बाकी है, कि जलजला बोले अभी सलाम रह गया, खाली सद्दा साहब रह गया, इनका एक बाकी था वो कंप्लीट होने दो, छत तो गिरती है भाई, तो इमाम को चाहिए पतली गली से भागे वो, लेकिन वो इमाम को भी पता था मैं अगर भाग गया मुक्तदी बोलेंगे आज अंदर तुम्हारे पीछे नमाज ही नहीं पड़ी, तो बुजदिल आदमी निकला। जैसे ही जलजला आए, हम पे फर्ज है जहां भी हो, चाहे तरावी में हो, तहज्जुद में हो, फौरन वहां से क्या करें, भागें। और ये हदीस में है, नबी ने फरमाया तुम में नमाज की हालत में कोई सांप देखे तो सांप को कत्ल करे जाके, नमाज कंप्लीट ना करे, होना तो ही चाहिए था हमारे नबी, हमारे जो राय है उसके मुताबिक हमें नबी ये समझाते कि जब कोई सांप देखे तो नमाज में बिल्कुल तवज्जो ना करो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्टेक्ट डायरेक्ट किससे चल रहा है, अल्लाह से चल रहा है। ऐसे मौके पे पता चलेगा किसकी सच्ची मुच्ची की नमाज थी, किसकी झूठी मूठी की। सांप तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि जिसकी अल्लाह पे नजर होती है उसको सांप बिच्छुओं से डर नहीं होता। तो ये बताते, लेकिन नबी ने ऐसा नहीं बताया, नबी ने फरमाया नमाज में सांप नजर आए क्या करना है, उसे मारना है। फिर इसमें फुकहा का इख्तलाफ हुआ कि जब हम उसे मारेंगे तो नमाज टूट जाएगी या नहीं टूटेगी। इमाम हनीफा कहते हैं नमाज टूट जाएगी, लेकिन उसको मारना क्या है, वाजिब है, दोबारा से नमाज पढ़े। बाद फुकहा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि नबी ने हुक्म दिया मारने का, तो आगे से ही कंटिन्यू कर ले, ठीक है ना, लेकिन मारना पड़ेगा उसको। अगर आपने नमाज नहीं तोड़ी सांप को देखकर, अल्लाह पे एतमाद किया कि मैं अल्लाह से मेरा कॉन्टेक्ट है, तो भाई सांप का अल्लाह से कॉन्टेक्ट इस किस्म का नहीं है। वो एक आदमी किसी के घर गया ना, कुत्ता बहुत भौंक रहा था, तो मेहमान डर गया, मेजबान ने देखा मेहमान डर रहे, तो मेजबान ने मेहमान से कहा आपने सुना नहीं है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं। कह रहे मैंने तो सुना, पता नहीं आपके कुत्ते ने भी सुना है कि नहीं सुना, इसको भी ये बात हो सकता है इसकी नॉलेज में ना हो, ये काट दे मुझे। तो सांप का थोड़ी कोई कॉन्टेक्ट है कि ये वो मारेगा। तो ये दीन फितरत है मेरे भाई, इसको में कोई अजीब सी चीजें दीन में लाने की कोशिश मत करो। तभी असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है हमें, और वसाइल इख्तियार करने का हुक्म दिया है। बात लंबी हो गई, कहां से कहां चले। तो बिदत में खुलासा ये निकला, बिदत में टेंशनें ही टेंशनें हैं, सुन्नत में राहतें ही राहतें हैं, सुकून की जिंदगी है। बिदत में बड़ी टेंशन है, क्योंकि बिदत के पांव नहीं होते, टेंशनों में चलते चले जाते हैं आगे। चलो भाई जल्दी जल्दी दोनों, अब मुख्तसर जवाब दूंगा, बहुत बद। सूरह हज के शुरू में तर्जमे मुख्तसर, ये तर्जमा फिर किसी वक्त करेंगे तो पूरी आयतें। सूरह हज की जो शुरू की आयतें ना, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत अस्साअति शय्युन अज़ीम, क़यामत की होलनाकियों का अल्लाह ने बयान किया सूरह हज के शुरू में। जन्नत में ले जाने वाले अमाल कौन से हैं, जन्नत में ले जाने वाले अमाल कबीरा गुनाहों से बचें, और मजीद कुछ चीजें हदीस में आती हैं, सर्दी में वजू करके नमाज पढ़ना, सर्दी में फजर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को नापसंद है, लेकिन ये इंसान को जन्नत के बहुत ज्यादा करीब ले जाती। मुफ्ती साहब शिर्क पर मरने पर क्या वईदें, भाई जहन्नम में जाएगा, अल्लाह ने कहा साफ कह दिया कुछ भी हो जाए मुशरिक की मगफिरत नहीं हो सकती, नामुमकिन। मुफ्ती साहब मेरी शादी को 2 साल हो गए, मेरी बीवी का गुस्सा बहुत तेज है और इसके माँ बाप भी इसकी हिमायत करते हैं और इसे घर ले जाते हैं। मैं इसके सारे हकूक पूरे कर रहा हूँ, इसकी तालीम का खर्चा दे, मशवरा दें। यार एक चीज, माँ बाप को अल्लाह का वास्ता अपनी बच्चियों के घर न तबाह किया करो। आजकल माँ बाप अपनी बच्चियों को ससुराल के खिलाफ सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये जो मैं बार बार कहता हूं ना, अपनी बीवी को अपनी माँ से अलग रखो, ये मैं आपको कहता हूं, बच्चियों के माँ बाप को नहीं कहता कि अपनी बच्ची को कहो कि सास से अलग रहे। बच्ची के माँ बाप को यही चाहिए, बेटा हमने तुम्हें खानदान में रुख्सत किया है, एक फर्द के हवाले नहीं किया, अब तुम उस खानदान को तरजीह दो, हम पे तरजीह दो, अपनी सास को मुझ पे तरजीह दो। जो माँ समझदार होगी ना, वो क्या कहेगी, बेटी मैं एक बात का हुक्म देती हूं और सास दूसरी बात का हुक्म देती है, तो तुमने मेरी बात नहीं माननी बल्कि किसकी बात माननी है, सास की बात। जो समझदार औरत होगी वो ये कहेगी, नहीं यारी बात मेरा ख्याल है समझ में। और बेवकूफ औरत क्या कहती है, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारी सास कौन होती है रोकने वाली। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, तुम्हारी सास कैसे, मैं मां हूं, मैंने पाला है, अबे पाला है तो उसका फ्यूचर देखो ना अच्छा है। और जो अच्छा बाप होगा ना बेटी का, वो कहेगा बेटा सुसर तो किसी और बात का ऑर्डर दे रहे हैं, मैं किसी बात का ऑर्डर दे रहा हूं, तो तुमने क्या करना है, सुसर की बात माननी है, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता नहीं है बल्कि किससे वाबस्ता है। आप कह सकते हो बाप अपनी बगावत से उकसा रहा है, भाई बाप असल वो होता है जो बेटी का फायदा देखे, तो बेटी का फायदा सुसर की मान के चलने में है। अगर बाप सुसर के खिलाफ लेके जाएगा तो नुकसान किसका होगा। मियां बीवी की मोहब्बत में हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह कितने बड़े आलिम थे, उन्होंने अपना एक वाकया खुद बयान किया, कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं आपके साथ उम्रे पे जाना चाहती हूं, यानी अपने शोहर के साथ नहीं बल्कि किसके साथ, आपके साथ। तो फरमाते हैं कि मैंने बेटी से कहा कि बेटा ऐसा ना करो, अपने शोहर को मुझ पर तरजीह दो और शोहर को बोलो कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूं, मेरे अब्बा मुझे ले जाना चाह रहे थे लेकिन मैंने कहा मैं किसके साथ जाऊंगी, अपने शोहर के साथ जाऊंगी। बच्ची भी समझदार थी माशाल्लाह, समझ में आया, उसने कहा अपने अपने हस्बैंड को यह बता भी दो कि मेरे अब्बा भी कहते हैं कि भाई पहला हक किसका है। तो वो शोहर भी इंसान का बच्चा होगा ना, तो ससुर की और कदर करेगा कि यार मेरा ससुर मेरी बीवी को अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में मेरी कदर बिठा रहा है। आज खींचातानी लगी हुई है, बेटी रो के जब आती है ना मां बाप के घर में, एक तो याद रखो बच्चियों पे बाज दफा जुल्म भी होता है, बाज दफा इतना होता नहीं है जितना वो बयान कर रही होती हैं। औरत की एक सिफत है रोना, उनको रोना जल्दी आता है, बाज दफा सही रोना भी होता है, कहीं ये ना समझे कि जो भी रो रही है तो आप बोले फ्रॉडी है, लेकिन औरत की आदत ही होती है कि बाज दफा इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना वो रो रो के बयान कर रही होती है। अब मां बाप का दिल नरम होता है, और होता है जाहिर है, उनको तो बेटी से मोहब्बत है, तजर्बा होता नहीं उनको, वो एकदम जज्बात में आ रहा, बच्ची रोती भी आई, आ ये हुआ, अब्बा एकदम तोपे निकाल के ना मिसाइल का रुख कर दिया ससुराल की तरफ बच्ची के, अबे मेरी बच्ची। भाई ये होता है, ये नेचुरल है यार, छोटी मोटी बातों पे बाज दफा बहुत बड़ा चढ़ा के बच्चियां बयान कर रही होती हैं, उनको पता है कि अगर हम वैसे ही आ गए तो यहां भी पिटेंगे, हम बोलेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं था, एक आंसू तो आ गई तो उठ के, हम पागल है क्या। तो वो फिर बेचारी वो लड़कियां बयान कर रही होती हैं उसको जज्बाती, ताकि माँ बाप ये समझे कि मेरा आना बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप उसको एकदम डांटना शुरू कर दें, क्यों आई है, ना ना उसको आराम से रिलैक्स रिलैक्स, अच्छा जुल्म हुआ हो अभी उसके हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है वाकई हुआ हो, ऐसा ना बगावत पे आ जाए, बिठाएं बेटा, ओहो हो ये बहुत हो गया बेटा, वो कहे फोन करें मेरे शोहर को, फौरन कभी भी फोन ना करें, ना ससुर को ना सास को ना इसके शोहर, आप बिठाएं, ओहो बहुत गलत हो गया, उफ मैं तो पहले ही इसका था कि ये सही नहीं है इस जगह, ये भी बैठो बेटा आराम से, 2-4 दिन गुजारें ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर पता चलेगा कि इतना हुआ है या नहीं हुआ। और फिर पहली दफा में एकदम से तस्वीर की कोशिश भी ना करें, हर घर में होता है शुरू शुरू में, उसको भी 2-3 दिन में खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती थी या किसकी गलती है। माँ बाप के घर रहना भी शादी के बाद बच्ची के लिए आसान नहीं होता, तो खुद ही कहेगी मुझे छोड़कर आए, तो आप छोड़ के चले जाए। फिर दोबारा ऐसा हो गया, 3-4-6 दफा हुआ है तो फिर जाके पूछे यार वो क्या मसला है भाई, क्या हो रहा है। एकदम से चंगेज खान ना बने, बिठा के दामाद को बुलाएं, बेटा आराम से बताओ क्या हुआ है, हो सकता है आपकी बेटी की गलती हो, वो ठीक हो, आपके साथ भी तो यही कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था शुरू में, हो सकता है वो ठीक हो, पूरी बात सुने। मैंने पीसीओ केसेस देखे हैं इस तरह से कि मामला कुछ और ही निकल रहा होता है जब तमीज से बात सुनी जाती, पूरी बात सुने फिर देखें, एनालाइज करें, तजिया करें भाई किसकी गलती है, जितनी हो उतनी आराम से तंबी करें। वो दामाद भी नया, उसकी 4थी शादी थोड़ी है, पहली दफा शादी की है, उसको भी नहीं तजर्बा कि बीवियों को कैसे लेके चला जाता है। तो इसलिए उसको आराम से समझाएं, यार ये बात इस तरह नहीं, इस तरह के देखो ये हमने बच्ची को बड़े नाज, हालांकि नाज वाज से पाला नहीं होता, लेकिन उस वक्त यही कहा जाता है हमने बड़े नाज से पाला है और जो है बहुत लाड से ये बच्ची पली है, इसको जरा तमीज से देखो। इस तरह करके 3 साल का आप समझ लें कि शादी के बाद 3 साल फड्डों में गुजरेंगे और उसमें बर्दाश्त के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को आजकल शादियां अजनबियों में हो रही हैं, एक दूसरे के खानदान मैच नहीं कर रहे होते, तरजीहात मैच नहीं कर रही होती, बहुत सारे मसाइल होते हैं, समझ नहीं पा रहे होते, 3 साल के बाद वो खुद एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, औरत को पता चल जाता है मेरे शौहर की ये कमजोरी है ये इसकी खूबी है, मर्द को पता चल जाता है ये कमजोरी है ये इसकी, वो खुद भी तो उन दोनों के मफाद है ना, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाते हैं वो, फिर 2-4 बच्चे हो जाएं तो वैसे ही वो फिर बच्चों के लिए सेट हो जाते हैं। लेकिन होता ये है कि एकदम न चंगेज खान बन के लड़की का बाप और उसके भाई और बहनों को धमकियां देना शुरू कर देंगे, वो अपनी गैरत का मसला बना लेता है इसको, वो कहता है यार ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे, फिर वो देर तलाकें होती हैं, फिर 4 दिन बच्ची को घर में बिठा के ना फिर कहते हैं यार ये तलाक हुई है कि नहीं हुई है, अहले हदीस से फतवा ले लो, उसी को पहनाने की कोशिश में लगे होते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता तलाक के बाद बच्चियों को घर में बिठाओगे, आजकल कमाईयों की शादियां नहीं हो रही, तलाक याफ्ताओं की कहां से हो रही है, थोड़ा कंप्रोमाइज करो। अच्छा शोहर को तो चाहिए कि वो अपनी बीवी को अलग रखे अपनी मां से, मैं ये शोहरों को कहता हूं, औरतों को नहीं कहता कि आप अपने शोहर से बोलो कि मुझे अलग, इससे घर का माहौल खराब होता है। मर्द को चाहिए खुद ही ये काम कर ले, खुद ये काम करे कि भाई अलग रखे उसको अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, लेकिन मां को नहीं चाहिए कि अपनी बच्ची के कान भरे मेरा बयान सुना सुना के, मुफ्ती साहब भी यही कहते हैं कि अलग रहना चाहिए, तुम इससे माहौल खराब होने के अलावा कुछ भी हासिल, वो इंसान का बच्चा होगा ना वो खुद ही अलग रखेगा, आपके मुतालबे पे नहीं करेगा वो, या उसकी कोई मजबूरी भी होती है बाज दफा, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता अलग रहने को, बाज दफा बहुत घरेलू मसाइल खड़े हो जाते हैं, हर आदमी में ये ताकत नहीं होती। तो मां बाप जो है ना बच्चियों का घर बसाने की कोशिश करें, उनको बताएं कि तुम्हारे सास ससुर का हक तुम पर हमसे ज्यादा है, और ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना ये हवाई बातें नहीं है, हमारा एटीट्यूड भी यही है, समझ में आ रही है बात की नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए उसूल कुछ और अपने लिए उसूल कुछ और हो, तो ये काम करना पड़ता है, उनको ससुराल की अहमियत बच्चियों के दिल में डालनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि ये तरजीह तुमने इनको देनी है, तो अब तुम्हारे असल मां बाप ये हैं, वो तो मानेगी कि मेरे असल मां बाप यही हैं क्यामत तक, लेकिन उनको उसकी वैल्यू दिल में डालने के लिए, समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं है तो जैसे जान गधे घोड़ों की तरह चल रहे हो चलते रहो, वो आएगी 2 आंसू भाई एकदम, अबे तू मेरी बेटी मैंने इसलिए भेजी थी, इसके आंसू फिल्मों में डायलॉग देखे हुए होते हैं, मैं इसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तूने भी तो इसकी मां को रुलाया है कितना, उसके आंसू कैसे बर्दाश्त हुए थे मैं इसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये हो रहा है तो वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, शोर शराबा हो रहा है बस, कुछ भी नहीं हो रहा, हकीकत क्या है ये इतनी जल्दी नहीं पता चलती, और ये फैसला करना तो बहुत ही मुश्किल है, इनमें सही कौन है गलत कौन है, कंप्रोमाइज ही करना पड़ता है, तो या तो गोरों वाला सेटअप ले आओ ना, सब अखपल अखपल जिंदगी गुजार रहे हैं, जब खानदानी लोग खानदानी तरीके से रहते हैं तो बर्दाश्त करना पड़ता है उनको। हाँ चर्सी हीरोइन की टाइप का दामाद है, साला गुटके खाता है, बीवी को लटका के छोड़ा हुआ है उसने, खर्चा पानी जो बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, तो फिर ज्यादा तूल ना दो इसको, फिर 3 साल की मोहलत देने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर बच्ची की रुख्सती हो गई, अब पता चला दामाद कुछ कर ही नहीं रहा, सारा बेटी का खर्चा ही आप भेज रहे हो, तो ये नहीं कि हम आपको एक्चुअली 3 साल मोहलत देंगे, ना 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 भाई, 3 साल मोहलत, 3 साल में बेड़ा कर, बच्चे भी हो जाएंगे, बाद में तलाक लेना बड़ा मसला बन जाएगा, ये तो भाई तूने हमसे झूठ बोला है, तू तो कमाता ही नहीं है, और जो अब तक नहीं कमाया आइंदा क्या कमाएगा, हमें गैब का इल्म थोड़ी है, एक आदमी ने 20 साल अपनी बच्ची की जिंदगी तबाह की है इस चक्कर में, दामाद कमाता नहीं था, खिलाते रहे, वो नशों में लगा हुआ था, और मुझे आके बता रहे हैं, अब तो पुराना वाक्य होगा पता नहीं चलेगा कौन है, मुझे कह रहे हैं हमने कहा कि नहीं हम खानदानी लोग हैं, तलाक लेके बच्चियों को हम घर नहीं बिठाते, तो वो फिर लड़कियों में इन्वॉल्व था वो दामाद, कह रहे हैं वो कमाता नहीं था, मैंने कहा मैं अपनी बच्ची को भेजूंगा एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह इसको सीधे रास्ते पे चला देगा, मैं तहज्जुद में बड़ी दुआएं मांग रहा हूं इसके लिए, 20 साल के बाद ये हुआ कि बच्ची दिमागी तवाजुन खराब हो गया उसका, ससुराल के जुल्म सह सह के, तो भी मेरे पास आए थे मशवरा लेने के लिए कि तलाक लेना मुनासिब है या नहीं है, मैंने कहा उसको ना मरने दो डिप्रेशन से फिर आना मशवरा लेके, तो ये तो संगीन नौयत के मजालिम है ना, इसमें फौरन एक्शन लेना पड़ता है, कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, मैंने कहा अल्लाह ने कब कहा है कि मैं आपके दिमाग को ठीक कर दूंगा, अल्लाह ने कोई वही की हो तो फिर मानो ना। अल्लाह ने तो किसी का, अल्लाह ने कहा हिदायत मेरे पास है, आपके पास नहीं। आप दुआ कर सकते, कर लिया आपने दुआ, तजर्बा कर लिया एक साल, बस बहुत है। नहीं ठीक हुआ इंसान का बच्चा नहीं बना, बस चल भाई हटा यहां से, खत्म। अब 20 साल के बाद वो क्या तलाक लेके उसको क्या करेंगे बेचारी का। फिर भी मैंने कहा तलाक लेके घर बिठा दो, उससे बेहतर है ये। तो ऐसे संगीन नौइयत के जब मसाइल होते हैं तो उसमें नहीं 3 साल की मोहलत और 4 साल की मोहलत और 10 साल तजर्बा करेंगे, वो तजर्बों की भेंट चढ़ जाएगी मेरे भाई। मैं उन मसाइल की बात कर रहा हूं जो हर घर में होते हैं। सासों के ताने हर घर में होते हैं, बहुओं की बदतमीजियां, क्योंकि स्कूलों में बाकायदा बदतमीज बनाया जा रहा है ऑर्डर पे, ड्रामों फिल्मों में बदतमीज बनाया जा रहा है, ड्रामों फिल्मों में ना दिखाया जा रहा है बीवी ने चमाट लगा दिया रख के। उस दिन क्या हुआ, मेरे मोबाइल पे क्लिप आया, किसी ने कोई ड्रामे का क्लिप भेज दिया, मुझे नहीं पता था कोई जानने वाले थे, मैंने देखा तो बीवी ने रड़क के थप्पड़, मेरी बेगम भी बैठी हुई थी ना, शोहर ने कुछ बोला, बीवी ने रख के थप्पड़ लगाया शोहर के। मैंने कहा ले भैया ये तो इसको मोटिवेशन मिल गई इससे। तो मैंने फिर घर वालों को समझा, मैंने कहा मैं भी बड़ा सियासत से काम लेता हूं ना, मैंने कहा ये बदतमीजी सिखाई जा रही है ड्रामों में, कितना गलत है। मैं ये थोड़ी कहता कि बेगम तुम ऐसा नहीं करना, मैंने कहा ये सिखाया जा रहा है बच्चियों को, लड़कियों को, ताकि वो शोहरों के खिलाफ थप्पड़ मारें और ये उनके मुंह पे तमाशे मारें, ये कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस, शोहर के मुंह पे थप्पड़ मारोगे भाई, मैं नहीं कह रहा कि शोहर जो थप्पड़ मार रहा है वो सही कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, लेकिन रिप्लाई में थप्पड़ तो और ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है ना, और ज्यादा गलत हो रहा है। तो ये है, सेटिंग चल रही है मार्केट में। तो माएं खुद अपनी बच्चियों के घर तबाह कर रही है भाई, बाप खुद तबाह कर रहे हैं आजकल। मोती साहब बहुत दफा बता चुका हूँ ये, मुफ्ती साहब पाकिस्तान में इमाम काबा है, आपका इरादा है इनसे मिलने का, इरादा हो तो वीडियो बनाकर जरूर अपलोड कीजिएगा। इमाम काबा से मिलना तो बहुत बड़ी सआदत है भाई, सबको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किधर बैठ रहे हैं, ये मुझे मेरे इल्म में नहीं। अगर कोई सूरत मुमकिन हुई तो वीडियो बना के अपलोड करना, ये मंजन मंजन वाली बात है। किसी बुजुर्ग की जियारत करो, मुसाफा करो पतली गली से, मैं कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग की जियारत के लिए जाता हूँ वीडियो नहीं बनवाता मैं। अगर मेरी कोई ऐसी वीडियोज आ रही है तो समझ लो किसी दूसरे ने बनाई है, ये बिल्कुल उसकी अकीदत के खिलाफ बात होती है। हाँ सेल्फी जरूर ले लें इंसान एक यादगार के तौर पर कि एक बड़े बुजुर्ग से हम मिले हैं, मोहब्बत की वो है, लेकिन ये जो वीडियो बना के शोबाजियां होती है ना, थोड़ी नामुनासिब होती है। बच्चे के कान में अजान किस तरह दें, अगर फजर की उन्होंने अजान दे तो क्या बच्चे के कान में अजान ऐसे दें कि उसको पहले जो है ना राइट कान इसमें अजान दें, और सॉरी ये वाला राइट कान में अजान दें किबले की तरफ, आपका रुख किबले की तरफ हो, फिर उसको घुमा के लेफ्ट में इकामत कह दें, बस यही है। बहुत चीख के अजान ना दें जैसे मस्जिदों में होती है, अजान एक सुराख से निकल के दूसरे सुराख से निकल जाएगी, आराम से अजान दें। फजर वाली नहीं देनी भाई, नॉर्मल जो आम अजाने होती है वो देनी। मुफ्ती साहब मैंने एक पेश इमाम की पढ़ के बता दें क्या लिखा हुआ, इतना लंबा है, खुलासा बता देना। मेरा नाम मोहम्मद रमजान है, हमारे गांव में 3 मस्जिदें और तीनों अहले हदीसों की इल्मे नमाज पढ़ने जाता हूँ, बहुत शरारतें करते हैं, मैं नाफ के नीचे हाथ बांधता हूँ, उठाकर सीने पर हाथ रख देते हैं। देखो सारे अहले हदीस ऐसे शरारती नहीं होते, इनमें भी किस्में होती हैं। आपको कोई शरारती अहले हदीस मिले जो जब आप यहाँ हाथ बांधो तो हाथ उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ऐसे शरारतियों को एक जवाब दिया करें कि सीने पर हाथ बांधने की कोई भी सही हदीस बोलो नहीं है। ये लोग कहते हैं ना वो सही हदीस है, वो सही नहीं है। अभी तो एक सऊदीया के अरब आलिम का क्लिप आया है, बड़ा वायरल हुआ है, सलफी आलिम है, रुमाल है सऊदीया के, उन्होंने तो इसको मकरूह करार दिया है कि सीने पे हाथ बांधना। तो हम लोग जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं देवबंदी मुकल्लिद, अब वो सऊदी आलिम का ये क्लिप वायरल हुआ है। तभी आपने सऊदीया में जितने भी अइमाए हरमैन के हो गए किसी को भी सीने पे हाथ बांधा हुआ नहीं देखा होगा। आप जितनी वीडियोस देख लें अइमाए हरमैन की और मस्जिद नबी के इमाम की या सऊदीया के आम जो बड़े उलमा है वहां, वो सबने नाफ पे या नाफ से थोड़ा सा ऊपर बांधे हुए होते हैं। तो सीने पे हाथ बांधना असलाफ से साबित नहीं है और इस बारे में जो रिवायत है वो ज़ईफ है। अब आप कह सकते हैं कि नाफ पे हाथ बांधने की कौन सी सही हदीस है, इस बारे में हकीकत यह है कि हाथ बांधना तो हदीस से साबित है, सही हदीस से, दाया हाथ बाएं हाथ पे रखना भी साबित है। उसकी कैफियत क्या होगी इस बारे में 100% मुस्तनद दलील किसी के पास भी नहीं है, इसलिए फुकहा में इसमें क्या हुआ है इख्तलाफ। अगर बिल्कुल बेगुबार रिवायत होती तो ये चारों इमामों में इख्तलाफ ना होता। तो इसलिए ऐसे मौके पे यही है कि आपको जो तरीका असलाफ से आपके पास पहुंचा आप उसको फॉलो करें, कोई दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप बुरा ना कहें। तो सीने पे हाथ बांधने की सही हदीस नहीं है, बल्कि मैं वो सऊदीया के जो आलिम का क्लिप में किसी वक्त हो सका तो वो वायरल करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी चीजें, मुझे इन चीजों का इतना ज्यादा शौक नहीं है कि मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ूं, लेकिन उनका तो अभी फतवा आया कि ये मकरूह है, और किसी को वो क्लिप ना भी मिले ना तो अरब उलमा का अपना अमल देख लो, तो लोग फौरन कहते हैं वो तो रफ़ुल यदैन भी करते हैं, वो तो ये भी करते हैं। बात यह है कि हम कोई अरब उलमा के फॉलोअर्स में से नहीं है, हम तो सिर्फ एक हुज्जत तमाम करने के लिए कि आप अगर हमें बिदती कहते हो इस मसले में तो हरमैन के इमाम को भी तो बिदती कहो ना, उनको आप कुछ नहीं कहते। हालांकि उनकी तो वीडियोस अब नेट पे जाके देख लें, किसी भी हरम के इमाम ने यहां हाथ नहीं बांधे हुए होते, तो इसलिए ये शिद्दत अब अगर आप यहां कर रहे हो तो सऊदी अरब में भी जाके करो, वहां नहीं करते यहां आके करते हो तो ये खयानत की बात है। अच्छा भाई, बाकी नमाज पढ़ा करें जाके, चाहे अहले हदीस हो चाहे गैर अहले हदीस हो, नमाज तो पढ़नी है ना जाके। मुफ्ती साहब मेरी शादी को 2 साल हो गए, मेरी बीवी का गुस्सा बहुत तेज हो तो चुका है मेरे भाई, हाँ, और इसके माँ बाप, मेरी बीवी गुस्सा बहुत तेज है और इसके माँ बाप भी इसकी हिमायत करते हैं और इसे घर ले जाते हैं, मैं इसके सारे हकूक पूरे कर रहा हूँ, इसकी तालीम का खर्चा भी दे रहा हूँ, मशवरा दें। मशवरा इसके माँ बाप को दूंगा मैं, दे दिया मैंने, आपको क्या मशवरा दूं मैं। देखो बीवी के अगर सारे हकूक पूरे कर रहे हो ना तो फिर, अगर कर रहे हो, नहीं कर रहे तो फिर बदमाशी का हक नहीं है, कर रहे हो ना फिर भी अगर वो मोहब्बत से बाज नहीं आ रही है तो फिर कुरान ने 3 स्टेप बयान किए, फिर भी इताअत नहीं कर रही तो पहला स्टेप कुरान ने बयान किया, मैं बयान करूंगा तो वो लोग मुझे बोलेंगे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हालांकि वो सीधी सीधी बातें हैं। तो आप 5वें पारे का ना, 4थे पारे का आखिरी रुकू, 4थे पारे का आखिरी रुकू पढ़ लें। ये आखिरी रुकू है कौन सा है, वही निम्र, वो क्या है, वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़ईज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फिल मवाजिई वद्रिबूहुन्न फ़इन अता अनकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला। ये आयत नेट पे सर्च करेंगे ना तो आयत नंबर आ जाएगी, मुझे आयत नंबर अभी जहन में नहीं है, आयत मालूम है। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़ईज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फिल मवाजिई वद्रिबूहुन्न फ़इन अता अनकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला। ये आयत है, तो ये सर्च करेंगे, इसका तर्जमा पढ़ेंगे, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा, सिस्टम की कैसे उसको साथ, ये आपको बता देंगे सिस्टम, ये बता देंगे कैसे डील करना उसके साथ। उसमें 3 स्टेप अल्लाह ने, पहले तमीज से समझाओ अल्लाह मियां के पर, उसके बाद आगे का स्टेप, यही बात समझ लें, बल्कि पहले अल्लाह ने कहा आराम से समझाओ, नहीं आता तो बिस्तर अलग कर लो उसके साथ, रूठ जाओ, नाराज हो जाओ, फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर अगला स्टेप है। मुफ्ती साहब ये कहां से आवाज आई, चमाट मारो। मैंने कहा चमाट मारो, कुरान में देखें क्या लिखा हुआ है, चमाट का तस्करा नहीं है कुरान में, आप तो वैसे भी नहीं मारे हैं यार शमा। सख्ती करें, मसला ये है, थोड़ा बदमाशी दिखाएं, फिर थोड़ा क्या दिखाएं, अगर अपने हुकूक पूरे कर रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि खुद ही गड़बड़ हो, जब तक दोनों के हालात सामने नहीं होते फैसला करना, बार दफा मर्द ही जालिम होता है, हमने तो एक तरफा बात सुनी, लेकिन मैं उस वक्त बात कर रहा हूं जब मर्द जालिम नहीं है, पूरे हुकूक अदा कर रहा है हर तरह से, फिर भी वो टेढ़ी बन के चल रही है, तो फिर सख्ती करने की इस्लाम ने इजाजत दी है। ये तर्जमा है, और कुछ तर्जमा नहीं है कि आप समझे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उसको जलेबी खिलाओ, पिज्जा खिलाओ। मुफ्ती साहब आखिरी सवाल है, मुफ्ती साहब मैंने एक पेश इमाम की, ये क्या है, हाँ अच्छा, ये कॉमन मसला है, लोग मेरे पास आते हैं कि हमने एक जगह निकाह का पैगाम भेजा है, लड़की के अब्बा राजी हैं, कह रहे 2 साल के बाद शादी करेंगे हम, तो आप उसके अब्बा को समझाएं। मैं कभी भी किसी के अब्बा को नहीं, आज भी जोहर में एक साहब आ गए कि मैंने एक जगह पैगाम भेजा, अच्छा भला रिश्ता है, लड़की के अब्बा को पता नहीं क्या मसला है, तो आप जरा उनको कहें ये एक ऑडियो भेज दें मेरे व्हाट्सएप से। मैंने कहा मैं किसी के जाती मामला में क्यों टांगड़ा हूं भाई, वो बोलेगा मुझे साहब मेरी बच्ची मैं, आप कौन होते हो, मैं जनरली उसूल बयान कर दूंगा, वो उसूल है, आप उनको बयान सुना दो, उसके अब्बा को मैं कहूं ये बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है काइंडली। तो अब वो 2 साल इंतजार कर रहा है, नॉर्मली तो ये ठीक अमल नहीं है, लेकिन उसकी क्या मजबूरी है वो जानता है, हो सकता है वो 2 साल तक आपको परखना चाह रहा हो कि आपने जो दावे किए हैं कि मेरी अर्निंग 1 साल में इतनी हो जाएगी, होती भी है कि नहीं होती, तो नॉर्मली तो ठीक नहीं है, फौरन निकाह होना चाहिए, लेकिन बाज दफा बाप को इतमाद नहीं होता, वो देखता है पता नहीं ये बंदा ठीक है भी कि नहीं है, 2 साल में खुल के सामने आ जाएगा, इंक्वायरी हो जाएगी, तो हमारी तरफ से अभी हाँ है लेकिन हम 2 साल से पहले नहीं कर सकते, इस तरह की बहुत सारी मजबूरियां होती, तो किसी के जाती हालात में मैं कभी भी टांग नहीं अड़ाता, कि आप आए कि मैं अब्बा को, हाँ बाज दफा ये जरूर होता है कि अब्बा भी, अब्बा जो है ना साबित हो जाता है। अभी एक ड्रामा आया है बड़ा जबरदस्त, यानी सच्ची मुच्ची वाला ड्रामा, वो अभी नहीं सुनाऊंगा, अभी सुना दिया ना तो वो उनको पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे ड्रामे हो रहे हैं ना मार्केट में, शादियों पे ड्रामे हो रहे हैं बहुत टाइम, अभी क्या बताऊं, वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है। ऐसे वैसे मजा बहुत आएगा सुन के यार, फिर मैं उसकी पूरी एक्टिंग करके दिखाऊंगा आपको। थोड़ा किरदार चेंज कर देता हूं। एक लड़के को बोला कि फला जगह शादी कर लो, वो चाह नहीं रहा शादी करना। अब्बा आए मेरे पास कि इसको समझाओ कि फला जगह शादी करो, वो नहीं कर रहा। तो लड़की अच्छी है, रिश्ता भी अच्छा है, बस वो कह रहा है मैंने नहीं करनी। तो मैं तो ऐसे मौके पे अब्बा को ही समझाता हूं। अब्बा ने इसरार किया तो मैंने कहा चलो बेटे से बात करके देख लेता हूं, भाई हो सकता है इसके दिल में हो कि कहीं और करनी है, हमारे सामने बता ना रहा हूं। बेटा ऐसा बन गया ना जैसे हाथ पांव टेढ़े नहीं हो जाते, यूं इस मौजू पर जब बात करो ना तो ऐसे हो रहा है यूं यूं कर, जैसे जिन आ गया उसके ऊपर। मैंने कहा फुल एक्टर है ये, यानी ऐसा बन गया अब्बा के सामने जैसे मेरे पर इस टॉपिक पे बात ही नहीं करो, मुझ पे जिन आ जाता है यूं यूं करके ना ऐसे कर रहा है। मुझे तो पता था कि ड्रामा कर रहा है अब्बा, एकदम डिप्रेशन में ना यार, ये हो क्या गया मेरे बच्चे को। मैंने कहा इसका असल इलाज है दो थपेड़े लगेंगे ना एकदम क्या हो जाएगा। मैंने कहा छोड़ो इस, तो इस तरह के ड्रामे भी होते हैं ये इस मुआशकों में। मैंने पूरा नहीं बताया आपको, असल में मैंने किरदार बहुत सारे दाएं बाएं करके चेंज किए ताकि असल वो ना समझे, लेकिन इस तरह के ड्रामे इस मुआशकों में बहुत होते हैं। बाद दफा अब्बा की तरफ से ड्रामा होता है, माँ की तरफ से, आप माँ से बात करते हो अम्मा मैं वहां शादी, अम्मा नहीं चाहती, एकदम अम्मा ना शुगर में चली जाएगी, ऐसा लगेगा अम्मा को कोमा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ होता, अम्मा ड्रामा कर रही हो। अम्मा भी बड़ी होती है माशाल्लाह, भाई कर रहा है ड्रामे इश्क मुआशके में। 99% ना बीमारी के ड्रामे चल रहे होते हैं, तो इन ड्रामों से होशियार रहा करो, ये जिन भी नहीं होते। हमारे उस्ताद ने एक ड्रामेबाज को पकड़ा, उस पर जिन आता था, उकलाबाजियां खाता था, हमारे उस्ताद ने उसको तबीयत से धोया ना, कमरा बंद करके बहुत मारा उसको। उसको अंदाजा हो गया बेटा यार ये तो बड़ा मसला हो गया ना। अच्छा उस्ताद ने को पता था ड्रामेबाज है तो उसको बहुत मारा। अच्छा उसके अब्बा को पहले बोल दिया था मैं इसका जिन उतारूंगा, आप बीच में नहीं आना, और आप अब्बा को जाहिर एक शफकत होती है, अब्बा को बाहर निकाला कमरे में ले जाकर तबीयत से धोया उसको। जब बहुत ज्यादा मारा है ना वो कह रहा है अबे ये मुझे लग रही है जिन को नहीं लग रही है। खुदा वो कह रहे नहीं तू, वो पहले तो जिन की आवाज निकाल रहा था ना, अरबी वरबी भी बोल रहा था, फजाइल अमाल से ना कुछ हदीसें याद कर ली थी उसने। वो मार रहे हैं तो पहले तो वो ड्रामे कर रहे हैं ना, वो जैसे जिन को लग रही है, लेकिन जब उसको ज्यादा मार रहा है तो कह रहे हैं अबे भाई ये मुझे लग रही है। वो कह रहे नहीं ये जिन को लग रही है, तू जिन है तो झूठ बोल रहा है। कह रहे खुदा की कसम मुझे लग रही है यार, ये मत मारो, जिन को नहीं लग रही है। ऐसे होते हैं ये सारे इस मुआशकों में ना जिन चुड़ैल भूत आए हुए होते। फिर उससे हमारे उससे नॉर्मल हो गया ना मार मार के उसका, फिर वो कहता है अच्छा चलो अब बता तेरे साथ मसला क्या। अरे भाई मुझे इश्क हो गया किसी लड़की से, मुझे घर वाले जाने नहीं देते वहां पे, मैं जिन मुसल्लत करता हूं तो उनके घर में इलाज के लिए ना कि बुजुर्ग हैं कोई अब्बा वब्बा होंगे कोई, तो जब मैं वहां जाता हूं तो नॉर्मल हो जाता हूं मैं, तो इस बहाने ये लोग मुझे बार बार महबूबा के चक्कर दिला। तो ये जो जिनविन होते हैं ना जो इश्क माशके में किसी, ये बहुत ऐसे कहते हैं इनमें जब इनको मारो तो इन्हीं को लग रही होती है। सुभान अल्लाह व बिहमदिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।